संदीप जी और महिला जिला प्रभारी बहन नीता नायक और माननीय श्री बीपी राजू जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने ये सुंदर व्यवस्था की है, मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से कोंकणी बात नहीं कर सकता, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। मेरी हिंदी सरल आसान आपको समझ में आएगी। भारत स्वाभिमान का एक अभियान सारे देश में शुरू हुआ, परंतु जिन्हें स्वामी रामदेव जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया 5 जनवरी 2009। अभियान प्रारंभ हुआ हरिद्वार नाम के नगर से। अब भारत के 680 जिलों में यह अभियान चलता है। इस अभियान में 2,40,000 युवक शिक्षक तन मन धन से काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11,00,000 युवक शिक्षक इस अभियान में काम करने के लिए आने वाले हैं। भारत देश के 5 कोटी नागरिकों को हम इस अभियान के साथ जोड़ने वाले हैं, उनको मेंबर बनाने वाले हैं। और हर व्यक्ति अगर 10 लोगों को कन्विंस करे, उनको मेंबर बनाए, तो 50 कोटी नागरिकों का ये अभियान अगले 4 वर्षों में होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये इतना बड़ा अभियान किस तारीख के लिए शुरू हुआ है। आजादी के पिछले 63 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम कर नहीं पाए सरकार के स्तर पर, उन कार्यों को पूरा करने के लिए ये अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, उनका आरोग्य उनको मिले, निरोगी हों, रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों सभी नागरिक भारत देश के, ये अभियान का प्रथम उद्देश्य है। अभियान का दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, आरोग्यशाली बनाना। भारत के नागरिक रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों और भारत देश भी रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, इन 2 उद्देश्यों के लिए अभियान समर्पित है। भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाने की गरज क्या है, जरूरत क्या है? हमारे देश भारत में आजादी मिली 63 वर्ष पूरे हुए, 115 कोटी की लोकसंख्या है। अभी थोड़े दिन में नया लोकसंख्या का आंकड़ा आने वाला है, कल से नई लोकसंख्या की गणना शुरू हुई है। सरकार कह रही है कि अभी लोकसंख्या 120 कोटी के आसपास होने वाली है। 120 कोटी की लोकसंख्या में 77 कोटी नागरिक गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। भारत में 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज बहुत खतरनाक रोग होता है, ये ठीक नहीं हो पाता है। जीवन भर आपको औषधि लेनी पड़ती है इंसुलिन नाम की, फिर भी रोग ठीक नहीं होता है। और डायबिटीज के बारे में सारी दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डायबिटीज साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर अर्थात डायबिटीज जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कभी भी मर सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आती है जब उसका मस्तिष्क चेतना शून्य हो जाता है, कोमा में चला जाता है और कोमा से बाहर आने की कोई कंडीशन नहीं रह पाती। सारी दुनिया में डायबिटीज के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि इस रोग की चिकित्सा नहीं है। इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर पाते हैं। यह रोग डायबिटीज जो है वो दबाया जा सकता है लेकिन इसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक दुनिया में इसकी औषधि तैयार नहीं है। इसी तरह से भारत में 4,50,00,000 लोगों को हृदय घात का रोग है, उनको हृदय अटैक आता है, उनके हृदय में अवरोध है, ब्लॉकेज है, किसी को 70% ब्लॉकेज है, किसी को 80%, किसी को 90%, कुछ लोग तो 99% ब्लॉकेज में तकलीफ पा रहे हैं। और इस बीमारी में भी संपूर्ण रूप से इलाज नहीं होता है। आप जब भी ऑपरेशन कराते हैं, हार्ट अटैक आता है तो एंजियोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन किया जाता है। इस एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग आपके हार्ट की वेन इसमें आर्टरीज में डालते हैं और वो स्प्रिंग छोटा सा होता है, जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग होता है, उसको डॉक्टर और चिकित्सक अपनी भाषा में स्टंट कहते हैं। जब आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं और स्टंट आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, 6-7 महीने के बाद वो स्टंट बेकार हो जाता है, उसकी लाइफ जाती है और 6-7 महीने के बाद आपको फिर अटैक आता है। तो सेकेंड टाइम फिर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करता है, एक और स्टंट डालता है, फिर 6-8 महीने बाद वो भी बेकार हो जाता है और तीसरा एंजियोप्लास्टी कोई व्यक्ति झेल नहीं पाता, अक्सर डेथ हो जाती है। इसमें भी बहुत गंभीर समस्या है। बाईपास सर्जरी आपको करा दें, उसका भी प्रॉब्लम है। बाईपास सर्जरी में आपके पैरेलल आर्टरी या वेन्स डाल देंगे, लेकिन उसमें भी ब्लॉकेज आता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ब्लड में, खून में ब्लॉकेज की अगर टेंडेंसी बन गई है तो बार बार ब्लॉकेज होता ही रहता है और इस बीमारी में भी संपूर्ण इलाज नहीं हो पाता। भारत में करीब 8 कोटि नागरिक हैं जिनको कैंसर है और इसमें से 24 लाख नागरिक हर वर्ष मर जाते हैं कैंसर के कारण। और कैंसर के बारे में तो आप जानते हैं, जिसकी कोई चिकित्सा अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है। भारत में 12 कोटि नागरिक हैं जिनको आंखों के रोग हैं, जैसे कैटरेक्ट है, मायोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। और सबसे खतरनाक आंखों का एक रोग भारत में हुआ ग्लूकोमा, और इससे भी ज्यादा खराब है रेटिनल डिटैचमेंट, वो ठीक ही नहीं होता, कभी नहीं ठीक होता। 12 कोटि नागरिकों को ये आंखों के रोग हैं। 14 कोटि भारतवासियों को लंग्स का इन्फेक्शन है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इन बीमारियों में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे दमा, तो चिकित्सक आपको कहेगा दमा तो दम निकलने के बाद ही जाता है, जब पेशेंट मर जाता है दमा ठीक हो जाता है, मैंने दमा का ट्रीटमेंट नहीं। फिर भारत में 17 कोटि नागरिक हैं जिनको जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट्स में, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, हमारी फिंगर जॉइंट्स में पेन है। और वो पेन 3 कारण से है, आइदर गाउट, गाउट हुआ है, अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस का 2 पार्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस और गाउट का पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो कई बार ठीक होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक ही नहीं होता, जीवन भर दर्द, पेन पेन, हमेशा दुख रहता है। इसी तरह से भारत में 20 कोटि नागरिकों को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर, और इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर इसके लिए टैबलेट खाइए, अभी जिंदगी भर टैबलेट नहीं खाया जाता, जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दूध पिया जाता है, दही खाया जाता है, टैबलेट नहीं खाया जाता जीवन। टैबलेट को 2-3 महीने में ठीक करे तब तो अच्छा, नहीं तो टैबलेट पर आप अगर डिपेंडेंट हो गए तो आपका तो बॉडी खत्म होने वाला है। गंभीर समस्या है हमारे देश में और हर दिन नया नया रोग आता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले स्वाइन फ्लू आया और उसके कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई। थोड़े दिन पहले बर्ड फ्लू आया था, सब लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो गया। अभी और एक खतरनाक बीमारी आ गया है, HIV/AIDS, जिसके बारे में सारे देश और समाज को तकलीफ हो चुकी है। नया नया बीमारी आते ही रहता है और इन बीमारियों में 77 कोटि नागरिक दुखी है, परेशान है, क्या करें उनको समझ में नहीं आता। डॉक्टर हमारे देश में बहुत कम है चिकित्सा करने के लिए, सारी दुनिया में अमेरिका में कनाडा में ब्रिटेन में फ्रांस में चिकित्सकों का संख्या बहुत अधिक है। पॉपुलेशन के हिसाब से वहां चिकित्सक बहुत हैं, भारत में बहुत कम चिकित्सक हैं। संपूर्ण भारत का पॉपुलेशन अगर 120 कोटि माना जाए तो इसमें सिर्फ 25 लाख चिकित्सक है, 25 लाख। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, ये MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BUMS अर्थात यूनानी पद्धति, BAMS अर्थात आयुर्वेदिक पद्धति, BHMS अर्थात होम्योपैथी पद्धति, MBBS अर्थात एलोपैथी पद्धति, सभी पद्धतियों का कुल मिलाकर 25 लाख चिकित्सक हैं। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, इनमें से 7 लाख चिकित्सक भारत से भाग गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वो भारत में नहीं है। पढ़ाई भारत में किया, भोजन भारत का खाया, पानी भारत का पिया, सब कुछ भारत में किया और भागकर अमेरिका चला, यूरोप चला, क्योंकि वहां थोड़ा पैसा जाते मिलता है। और वो पैसा जाते इसलिए मिलता है कि अमेरिका का $1 भारत का 50 रुपया, इसलिए वो भाग गया, अभी वापस आने का कोई चांस नहीं। अभी भारत में चिकित्सा देने के लिए 18 लाख चिकित्सक ही बचा है, अभी 18 लाख चिकित्सक है और 77 कोटि बीमार नागरिक हैं। चिकित्सा कभी भी संभव नहीं। एक डॉक्टर बहुत ईमानदार बहुत कर्मठ काम करता है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जाती जा 100 पेशेंट देख सकता है, 100 मरीज देख सकता है। और हमारे देश में मरीज 77 करोड़ हैं, 77 कोटी। और डॉक्टर जिन मरीजों को देख सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कोटी, तो 75 कोटि मरीजों का क्या होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न। और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटि लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी जुकाम खोखला खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियन फीवर आया, कम से कम 1,500-2,000 रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका 1,000 रुपए जीवन भर खर्च होने वाला है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है। लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है, महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 ईयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। 1991 में भारत का दवाएं सबसे सस्ती थी, लेकिन 1991 में क्या हुआ, भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, नीति बनाया, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस नीति में क्या हुआ, औषध निर्माण करने वाले जो कंपनीज हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ परसेंट का प्रॉफिट सरकार ने छूट दे दिया। पहले हमारे देश में क्या होता था, औषधि निर्माण करने वाली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते, कानून था, और औषधि का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, तो गवर्नमेंट के प्राइस फिक्सेशन के कारण ज्यादा महंगी औषधि नहीं मिल सकती थी। और सभी कंपनियों को ये आदेश था कि जो कंपल्सरी मेडिसिन होती है, असेंशियल मेडिसिन होती है, अति आवश्यक औषधि होती है, उसमें वो 15% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते थे, ये कानून था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने वो कानून को उलट दिया, अभी एक नया कानून बना दिया। अभी कानून ये है कि कोई भी औषध कंपनी 20,000% प्रॉफिट ले सकती है, 50,000% प्रॉफिट ले सकती है, 1,00,000 का प्रॉफिट ले सकती है। अभी नया कानून ये है जो औषध कंपनियों ने हजारों लाखों प्रतिशत प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में औषधि का काम करने वाली कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट इकट्ठा किया पिछले 10 साल का। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, दूसरा एक कंपनी है उसका नाम है ग्लैक्सो, तीसरा एक कंपनी है उसका नाम है कैडिला, चौथा एक कंपनी है उसका नाम है रेनबेक्सी, पांचवा एक कंपनी है इस देश में उसका नाम है वायस, छठा एक कंपनी उसका नाम है एली लिली, सातवां एक कंपनी उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आठवां एक कंपनी उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, फिर एक कंपनी उसका नाम है सीपा डायरी। ऐसे 10 कंपनियों का मैंने स्टडी किया तो उनका मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 20,000% है, 20,000% का मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफे में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है। हमारे भारत में इस समय औषधि बेचने वाली कंपनियां लगभग 20,000 हैं और ये सभी कंपनियों को 1,000% का मुनाफा हो रहा है। और ये मुनाफे का शेयरिंग कैसे होता है, कंपनी जब लाइसेंस लेती है तो उसका कुछ प्रॉफिट जो शेयर है वो उधारियों को देती है, पॉलिटिशियंस को देते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस अपना हिस्सा खाते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको शेयर मिलता है, फिर उसके बाद वो दवा जब बिकती है तो दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर अपना कमीशन खाते हैं, फिर डॉक्टर्स के बाद जो केमिस्ट है रिटेलर उसको कमीशन होता है, और डॉक्टर और केमिस्ट के कमीशन के बाद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है उसका कमीशन होता है, फिर वो सारा कमीशन ऊपर से नीचे तक बढ़कर बांट होता है, और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकाल जाता है, आपको लूटते हैं और उस लूट में ऊपर तक शेयर करते हैं। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, केमिस्ट, रिटेलर, ड्रग्स, ये सब लूट मार करते हैं। और आपको उनका आश्चर्य होगा कि रिटेलर और केमिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डॉक्टर्स को कमीशन 25-30% है, एमआर को 10-15% है, और फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कमीशन 15-20% है। ये ऊपर से नीचे तक कमीशन में इतना पैसा जाता है कि 1 रुपए का मेडिसिन 200 रुपए का हो जाता है, और वो सारा पैसा आपकी जेब से निकालते हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिसिन है उसका नाम है पैरासिटामोल, ये मेडिसिन आपको दिया जाता है जब आपको बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ये एक पैरासिटामोल 400 mg का कारखाने में सिर्फ 2 पैसे में बनता है, ओनली 2 पैसा पर टैबलेट, और आपको वो 2 रुपए का बेचते हैं। अब 2 पैसे का टैबलेट अगर 2 रुपए में आप खरीद रहे हैं, 1,000 तक का होना, और एक मेडिसिन बताता हूँ, एस्पिरिन डिस्पिरिन। ये दोनों मेडिसिन 400 mg का कारखाने में बनता है, एक पैसे में एक टैबलेट, और आपको बेचते हैं 1.5 रुपए का एक टैबलेट। कुल्लोनिमोल नाम का एक मेडिसिन है, ये बच्चों को देते हैं डायरिया और डिफेंसिव में। एक मेडिसिन बनाने का खर्चा 3 पैसे आता है, एक टैबलेट कुल्लोनिमोल 200 mg का, और वो आपको देते हैं 3.5-4 रुपए में। लूट मचा हुआ है और सरकार कहता है लूट का खुला छूट, इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने लूट का खुला छूट, जितना लूटना है लूटो, कोई कानून नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सभी कुछ मल्टीनेशनल और ड्रग कंपनी के ऊपर है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, महंगाई बहुत है, दवाओं का कीमत जाती है, डॉक्टर का फीस बहुत जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत जाती है, इसलिए गरीब लोग इलाज कर नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इलाज करने का कोशिश करेंगे तो उसका घर तो बिकने वाला है, जमीन तो जाने वाली है, घर में जो गाड़ी में है सोने चांदी के वो तो फिक जाने वाले हैं, अगर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में। और लास्ट सीरियस प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, क्लोरोक्विनोल, मेट्रोफॉर्मिन, प्रोवाइकॉन, ये सभी मेडिसिन पॉइजनस है, जहर है, खतरनाक जहर। आपको उनसे आश्चर्य होगा, दुनिया का अमेरिका, ब्रिटेन जैसा अमीर देशों में जो मेडिसिन बंद हो चुका है, 20 साल पहले बंद हो चुका है, वो मेडिसिन भारत में बेचा जाता है। पैरासिटामोल नाम का मेडिसिन अमेरिका में बैन है, 100% लास्ट 20 ईयर्स से बैन है, पैरासिटामोल भारत में बेचते हैं। आप बोलेंगे क्यों बैन है, पैरासिटामोल ऐसा खतरनाक मेडिसिन है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी फेलियर के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं पैरासिटामोल के कारण, और किडनी डैमेज हुआ तो 3,50,000 रुपए खर्च होता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने का। बहुत खतरनाक मेडिसिन पैरासिटामोल। क्लोरोक्विनोल नाम का एक मेडिसिन जो छोटे बच्चों को देते हैं डायरिया डिजेंट्री में, ये मेडिसिन अल्टर करता है, अल्टर के बाद पेप्टिक अल्टर होता है, और बच्चों को अक्सर कैंसर हो जाता है। क्लोरोक्विनोल इतना खतरनाक है। क्लोरोक्विनोल मेडिसिन को दुनिया का 50 देश में बैन किया जा चुका है, दुनिया अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हमारे भारत में वो बिक रहा है क्लोरोक्विनोल। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ये एनर्जेटिक फैमिली का 4 मेडिसिन है, ये सभी बैन है दुनिया में। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बैन है ये मेडिसिन, भारत में भी करा। आपको सुनकर बहुत दुख होगा, एक संस्था है दुनिया में, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत देश के मार्केट में 84,000 मेडिसिन बिक रहा है, 84,000 मेडिसिन बाजार में है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारतीय नागरिकों को सिर्फ 350 मेडिसिन की जरूरत है और 84,000 बिक रहा है। जरूरत है 350 मेडिसिन का, बिक रहा है 84,000। आप बोलेंगे कैसे बिक रहा है, वो डॉक्टर का कमीशन का जो लालच है उसमें डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, आप उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखो, तो ब्लड प्रेशर का वो 10-12 टैबलेट लिख देता है, उसमें से एक टैबलेट आपको काम आने वाला है, बाकी सब वो कमीशन के लिए लिखता है। डॉक्टर को कमीशन चाहिए, बिना कमीशन के कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता इस देश में। हम सोचते हैं चिकित्सक या डॉक्टर बहुत बड़ा देवता है, भगवान है, वो बिजनेसमैन, और क्रूक्रेटिव बिजनेसमैन, खतरनाक कठोर बिजनेसमैन है, कठोर। आपका बीमारी में से जो पैसे निकालेगा उस बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर में दया, प्रेम, करुणा, सेवा, ये सब खत्म हो चुका है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा। और डेंटल पूछेगा आपको एक दो उदाहरण देता है, आपको सपोज कुछ बीमारी हुआ, सीधे आईसीयू में डाल देगा, इंटेंसिव केयर में। और जैसे ही आप आईसीयू में गया, अभी तो जिंदगी आपका खत्म हो गया, आईसीयू में डालेगा। दिल्ली का आईसीयू का चार्जेस जो है ना, 5-star होटल के बिल से भी ज्यादा होता है। 700 rupees दे, 700 rupees एक दिन, 800 rupees, 1000 rupees। और कब तक रखना है आईसीयू में, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिर आईसीयू में डालने के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला होता है कि वो पेशेंट को देखने नहीं देता, वो कहना दूर रहना, जाना नहीं वहां पर, दूर रहना। क्यों? आप नजदीक रहेंगे तो माहिती हो जाएगा, क्या मेडिसिन दिया, क्या नहीं दिया, कितना इंजेक्शन दिया, कितना नहीं दिया, वो आपको बोलेगा दूर रहना। फिर आपको बिल देता जाएगा, देखो सुबह 3 injections में लगाया, आप पूछो डॉक्टर 3 injections लगाया उसका तो कुछ बॉटल होगा खाली इंजेक्शन का, वो जरा दिखा दो, वो नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इंजेक्शन लगाया ही नहीं, पैसे देगा आपसे इंजेक्शन। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तब होता है जब आईसीयू में पेशेंट मरने की स्थिति में आया तो उसको वेंटिलेटर पर रख देगा, मरने के लिए देता आसानी से, वेंटिलेटर पर रख देगा उसको, और वेंटिलेटर का मशीन चलाएगा, आपको लगेगा पेशेंट जिंदा है, वो पेशेंट जिंदा है, मशीन चल रहा। 2-3, 4-6 दिन वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर, दिन बन गया 50,000, 1,50,000, 1,50,000, फिर बोलेगा पेशेंट मर गया, अभी इसको लेके जाए। लेकिन पेशेंट का रेड बॉडी तब तक नहीं देगा जब तक तुम उसका पेमेंट नहीं कर। मुझे बहुत दुख होता है, मैं अभी बोलता हूं डॉक्टर कथाई है यमराज का भाई। कभी कभी मुझे लगता है यमराज डॉक्टर से जाती अच्छा, यमराज सिर्फ जान लेता है, डॉक्टर पैसे भी लेगा जान भी लेगा, दोनों निकालेगा। मुझे कोई पूछता है राजीव दीक्षित तुम्हारे दिल का बात करो, तो मैं सबको हाथ जोड़कर मेरे दिल का बात कहता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी खतरनाक नहीं है उससे जाती डॉक्टर खतरनाक। और ये डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमने एमबीबीएस एमडी किया, 20 lakh rupees खर्च किया, 30 lakh rupees खर्च किया, 40 lakh खर्च किया, अभी हमको तो लूट देगा, लाइसेंस मिला तो हमको लूटने वाला है, ऐसा विशेष सेक्टर हमारे देश। अभी क्या करना, 77 crore नागरिक तो बीमार है, वो तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर वैसे ही बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, और जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दुनिया में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एलोपैथी का, उसका नाम डीन ओर्निश अमेरिका में है, मेरा उसका थोड़ा दोस्ती है, मैं उसको ईमेल करता हूं। एक बार मैं डॉक्टर डीन ओर्निश को पूछा कि एलोपैथी चिकित्सा में कौन सा ऐसा डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया, तो वो बोलता है डीन ओर्निश एक भी डिजीज का ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं हो सकता। मैं बोला फिर तुम करते क्या हो, वो बोलता है हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम मैनेजमेंट करते, हम डिजीज को मैनेज करते, ट्रीट नहीं करते, मैनेज करते। तो अभी डॉक्टर में ये मैनेज है, और ये सारा मैनेजमेंट आपके पैसे से होता है, डॉक्टर के पैसे से नहीं होता। फिर मैं उसको बोला आप लोग मैनेजमेंट करते हैं क्यों करते हैं, वो कहता है कि एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी डिजीज के लिए मेडिसिन बना नहीं अभी तक, फिर मैं उनको पूछता हूँ 84,000 जो मेडिसिन बिकता है वो क्या है, वो कहता है ये सभी पॉइजन है, मेडिसिन नहीं, इनका सभी का साइड इफेक्ट है, एक भी मेडिसिन इसमें नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भीम और उमेश को पूछा कि दुनिया के लोगों को चिकित्सा देना है तो क्या करना चाहिए, वो बोलता है सभी को आयुर्वेद सिखाना चाहिए, योग सिखाना चाहिए, प्राणायाम सिखाना चाहिए। मैं पूछा क्यों, तो उसने कहा ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद में ही होता है, योग और प्राणायाम में होता है, एलोपैथी में तो मैनेजमेंट होता है, डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। और भीम ओजिश जो है ना कार्डियक है, कार्डियक सर्जन है, कार्डियक सर्जन आप हर सटेक आने के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, वो बोलता है कि मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है मैं उसको बोलता हूँ प्राणायाम करो, योग करो। भीम ओजिश अमेरिका में बैठ के बोलता प्राणायाम करो, योग करो। मैं बोलता हूँ तुमको प्राणायाम कैसे आता, उसने कहा मुझे नहीं आता। मैं बोलता हूँ आपका चेहरे को ऑन करो, बाबा रामदेव को देखो, प्राणायाम करो, वो मुझे कहता है कि मैं अमेरिका में बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा प्रचार करता हूँ, सभी को बोलता आपका चैनल देखो प्राणायाम करो। और फिर क्या करते हैं, फिर वो कहता है मैं सबको बोलता हूँ दूध ही क्या रखती हो, दूध ही भोगता उसका रस पियो, तो क्या होता है वो कहता प्राणायाम करेगा दूध ही भोग के रस पिएगा, ब्लड पूरा क्लियर हो जाता है, उसको दूसरा ट्रीटमेंट का जरूर ही नहीं। फिर मैं बोला इसमें तो बिजनेस नहीं हो सकता, उसने कहा हाँ ये तो प्रॉब्लम है, इसमें बिजनेस नहीं। तो भारत का जो चिकित्सा पद्धति है प्राणायाम योग और आयुर्वेद इसी में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है दुनिया। लेकिन दुर्भाग्य अपने देश का क्या है कि जो चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद योग प्राणायाम उसका प्रचार नहीं है पूरे भारत, उसके बारे में किसी को माहिती नहीं है। और चूंकि प्रचार में ये माहिती नहीं है इसलिए ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं ले पाते, इसलिए भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये अभियान शुरू किया कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद का प्रचार गांव गांव होना, गली गली होना, नगर नगर होना, एक एक घर में जाकर लोगों को ये माहिती देना, तभी लोग अपने स्वास्थ्य को अपनी चिकित्सा को खुद कर सकेंगे और बीमारियों से बच सके। हमारे भारत में बीमारियों को मैनेज करने का जो डॉक्टर खर्चा देते हैं ना एक साल में, जो वो मैनेजमेंट करते हैं डिजीज का, वो खर्चा 7,00,000 करोड़ रुपए है, इतना खर्च हम करते हैं हर साल। और 7,00,000 करोड़ रुपए समाज का खर्च होने के बाद भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट। तो हम लोग सोचते हैं कि भारत के लोगों का 7,00,000 करोड़ रुपए का खर्च बचाना है, उनको योग और प्राणायाम सिखाना है, उनको आयुर्वेद का माहिती देना है। तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का माहिती अगर किसी को भी होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, क्योंकि योग प्राणायाम ट्रीटमेंट करने का सबसे पुराना पद्धति है भारत में, लाखों वर्ष पुराना पद्धति। योग प्राणायाम का आविष्कार हुआ इस देश में महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने जब इस पद्धति का आविष्कार किया तब उन्होंने ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा पद्धति है योग और प्राणायाम। स्वस्थ रहना माने डिजीज फ्री रहना, तो आप योग प्राणायाम करिए। महर्षि पतंजलि ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम सिखाया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसमें रिसर्च किया और उन्होंने जो रिसर्च किया वो ये प्रूव करने के लिए कि योग और प्राणायाम आपको डिसीज फ्री ही नहीं बनाता है, आपके बॉडी में जो डिसीज है उनका भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ये स्वामी रामदेव जी ने किया लास्ट 10-15 ईयर्स, और तभी जाकर ये पता चला कि योग प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी बनाता है और रोग यदि शरीर में है तो उसको समाप्त कराता है। और हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला डायबिटीज नाम का जो रोग है, जो जो कभी भी ठीक नहीं होता एलोपैथी में, वो योग प्राणायाम से दो तीन महीने में ही ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों मरीजों के रिकॉर्ड हैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में, जिनको डायबिटीज 40 साल से था। 40 साल से वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट उनका लाइफ हो गया था, और उन्होंने योग प्राणायाम शुरू किया। 2 से 3 महीने में सभी का इंसुलिन बंद हो गया और अभी लाइफ उनका एकदम नॉर्मल है। अब वो एक दिन में 200 ग्राम भी मिठाई खाता है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ता उनका, ऐसा चमत्कार योग प्राणायाम में होता है। लाखों ऐसे मरीज हैं जो हाइपर टेंशन में थे और उन्होंने योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया और 8-10 दिन में ही उनका सारा मेडिसिन बंद हो गया हाइपर टेंशन का। हमारे सभी तरह के डिजीज का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम कर सकता है। अभी तो हमने देखा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम से होता है। आप अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे एलोपैथी में तो 8-9 महीने लगता है, लेकिन योग प्राणायाम से ट्यूबरकुलोसिस 3 महीने में कंप्लीट क्योर होता है। आपको माइग्रेन है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो 6-7 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाए। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम एक क्रिया है प्राणायाम की, और भस्त्रिका करें, आपका ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाए। किसी ताई को, किसी आई को यूट्रस में ट्यूमर है, वो ट्यूमर रिजॉल्व हो जाता है कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों एक साथ करने। आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोरूमेटिस, कुछ भी, आप कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों को साइमल्टेनियसली करें, ये गाउट और अर्थराइटिस क्योर हो जाए। हमने देखा योग प्राणायाम से 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में, वो योग प्राणायाम से अभी ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर सबसे आसानी से ठीक होता है, ऑस्टियोपैथिक माने आहार नली कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। योग शिक्षक गांव गांव जाकर वो पूरा निःशुल्क सिखाते हैं, किसी से पैसा भी फीस नहीं लेते, तो ये निःशुल्क है। दूसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं। और चौथा, भारत देश का करोड़पति या अरबपति दोनों का सकता है। और इसको करने के लिए जाति स्पेस नहीं लगता, मैं जितना स्पेस में बैठा हूं इतने स्पेस में हो जाता है, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 4 वर्ग फीट स्पेस में सभी प्राणायाम हो जाते हैं। कितना सरल, करोड़पति रोगपति सब कर सकते हैं, अमीर गरीब सब कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कर सकते हैं, जैन पारसी बौद्ध सभी कर सकते हैं, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, कोई भी कर सकता है। इसकी बाउंड्रीज नहीं, सीमा नहीं, असीम है, निस्सीम, और इतना सिंपल है कि आप 2 घंटे में सीख सकते हैं। एक दिन आप हमारे क्लास में आइए, 2 घंटे में आप पूरा प्राणायाम सीख लेंगे, और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। आप अपना डिसीज दूर कर सकते हैं, दूसरे का भी डिसीज हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है। आप जो है ना, हीलर हो सकते हैं, अपने को ठीक किया, दूसरे को ठीक कर दिया। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होता है और दूसरों को स्वस्थ करने के काम में लगता है, उस व्यक्ति को 100% मोक्ष हो जाता है। हमारे जीवन में ये कहा जाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या, तो भारतीय जीवन दर्शन में अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति किसको होती है, व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाए और दूसरों को स्वस्थ बनाने का काम करे वो सभी लोगों को मोक्ष मिलता है। तो मैं चाहता हूं मैं मोक्ष में जाऊं, आप भी जाओ। कैसे? आप पहले अपनी बीमारी ठीक करो योग प्राणायाम से, फिर दूसरों को सिखा दो, उनकी बीमारी ठीक करा दो, आप सभी को मोक्ष मिल जाए। मुझे तो मोक्ष में जाना है, स्वर्ग में जाना है और स्वर्ग का तीर्थ चाहिए मुझे, इसीलिए मैं फोंडा आया। फोंडा मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए आया, आपके लिए नहीं आया। मेरा स्वास्थ्य क्या है? मैं स्वयं स्वस्थ हो गया योग करके प्राणायाम करके, अभी मुझे कोई डिसीज नहीं। मैं चाहता हूं आप भी स्वस्थ हो जाए योग प्राणायाम करके, तो मेरा मोक्ष का तीर्थ पक्का हो जाए। मुझे लोकसभा का तीर्थ नहीं चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। और जब मेरा तीर्थ पक्का हो जाएगा फिर आपका भी पक्का हो जाएगा। आपका बीमारी खत्म हुआ, आप दूसरे को सिखाना, आपका मोक्ष हो जाएगा, हम सब मोक्ष में इकट्ठे हो जाएंगे। और सुना है कि वहां स्वर्ग में कुछ काम नहीं रहता, सुबह खाली, शाम खाली, दोपहर को खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम का ही प्रयास लगाएंगे और इंद्र भगवान को सिखाएंगे। ये उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। इस उद्देश्य में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारी जो योग कक्षाएं चलती हैं, फोंडा में भी चलती हैं, सब जगह चलती हैं, गोवा गोवा में हमारी हर दिन 150 योग कक्षाएं चलती हैं। किसी भी कक्षा में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीखिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ये लाखों रुपए जो डॉक्टर के चक्कर में आप खराब कर रहे हैं, ये सारा पैसा आपका बचेगा और वो पैसा आप चाहे वहां खर्च कर दीजिए। हमारा टारगेट है 7,00,000 करोड़ देश की बचत कराना। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों बराबर। आप किसी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन से, जरूरत है इसको बनी, आप किसी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन करके, वो एक काम है। लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में अगर आप बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो उससे भी बड़ा काम। हमारे देश की सेविंग्स को 7,00,000 करोड़ अगर हम बढ़ा सकें तो भारत को सोने की चिड़िया हो सकता है सारी दुनिया। एक वर्ष में 7,00,000 करोड़, दो वर्ष में 14,00,000 करोड़, तीन वर्ष में 21,00,000 करोड़, पांच वर्ष में जो धन इकट्ठा होगा 35,00,000 करोड़, वो इतना धन है कि उससे सोना खरीदे तो भारत के एक एक गांव का फलक सोने से बनाया जा सकता है, इतना धन हम बचा सकते हैं। और एक ही वर्ष का 7,00,000 करोड़ बचा लेना तो गोवा राज्य का एक एक गांव का फलक पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पकड़ा बिछा सकते, एक वर्ष में इतना पैसा बचा। तो क्यों ना बचाएं हमारा पैसा और क्यों ना लोगों को मदद करें, इसलिए हम ये योग प्राणायाम का अभियान चला रहे हैं। और भारत में एक परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु भवे, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख न हो, किसी को कोई रोग और बीमारी ना हो, ये हमारी महान परंपरा को हम फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं भारत स्वाभिमान नीति के लिए। आपसे मुझे एक छोटी बात और करनी है कि आप योग प्राणायाम सीखें, बीमारी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा आयुर्वेद का कुछ नॉलेज ले जाए, आपके आपके लाइफ में बहुत काम आए। आयुर्वेद सारी दुनिया में एक ऐसा पद्धति है जो ये कहती है कि बीमार नहीं होना, हमेशा स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। दुनिया की जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है वो ये कहती है पहले बीमार होना फिर हमारे पास आना, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद कहता बीमार ही नहीं होना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं बीमार नहीं होने के लिए, निरोगी रहने के लिए। उनमें से तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीन प्रिंसिपल्स नहीं सॉरी चार, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, आप इनको फॉलो करेंगे लाइफ में कभी डिसीज नहीं आएगा। योग प्राणायाम तो है, उसके साथ आयुर्वेद बोनस है। और ये प्रिंसिपल जो है आयुर्वेद के भी मेरे बनाए हुए नहीं है, एक महान बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने बनाए प्रिंसिपल है, उनका नाम है महर्षि भागवत। आपने आयुर्वेद में एक महान ऋषि का नाम सुना होगा महर्षि चरक, एक नाम सुना होगा महर्षि शुश्रुत, उन्हीं के समानांतर एक व्यक्ति थे महर्षि भागवत। उन्होंने आयुर्वेद का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक दूसरा ग्रंथ है अष्टांग संग्रहम। ये दोनों ग्रंथ मराठी में मिलते हैं, कभी मौका मिले तो खरीद लीजिए पढ़िए, बहुत काम के ग्रंथ है। अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में 7000 सूत्र हैं निरोगी होने का, रोग मुक्त होने का। वो 7000 सूत्रों को मैंने पढ़ा, बाद में मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को 7000 सूत्र याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको कम करना चाहिए, तो मैंने 7000 सूत्रों को सेलेक्ट किया, 1000 किया, फिर मुझे लगा वो भी ज्यादा है, फिर 500 सेलेक्ट किया, फिर 50 किया, फिर 20 किया, उसमें से 4 बता। सबसे महत्व के सूत्र हैं आयुर्वेद चिकित्सा के, बीमार नहीं पड़ना, जीवन भर निरोगी रहना, इसके लिए वो सूत्र है। क्या सूत्र है? आयुर्वेद चिकित्सा में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है, जब उसका वात पित्त और कफ असंतुलित होता है। वात पित्त और कफ ये तीनों अगर बिगड़ गया तो बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं, 80 रोग आते हैं वात के बिगड़ने से। क्या रोग आते हैं? घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जॉइंट में पेन होना, हार्ट अटैक आना, कार्डियोवैस्कुलर होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं, 80 रोग आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं कि पित्त अगर बिगड़ता है किसी व्यक्ति का तो उसको 40 रोग आते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, बाद में कैंसर भी हो सकता है, ये पित्त के बिगड़ने के रोग। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कहा गया कि कफ जब बिगड़ता है तो 20 रोग आते हैं, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ऐसे आपको 20 रोग आते हैं। कफ के बिगड़ने का सबसे खतरनाक रोग है मोटापा बढ़ना, लठ पड़ना, वजन ज्यादा होना, ऑबेसिटी, ये कफ के बिगड़ने का रोग है। तो कफ पित्त और वात तीनों को ना बिगड़ने दें, जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? वात पित्त कफ को सुंदर रखना, सुंदर के साथ व्यवस्थित रखना, बैलेंस रखना, इसके लिए छोटे छोटे कुछ काम करिए। एक काम, पहला काम क्या करें? खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ये पहला नियम है। भोजनांते विषम वायु, भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वायु माने पानी, भोजन के अंत में अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं, ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है। पर भोजन के अंत में पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना? कारण उसका यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन हमारे पेट में इकट्ठा होता है, स्टमक में, पेट में एक स्थान होता है उसको कहते हैं जठर, संस्कृत शब्द है जठर, मराठी में भी है जठर, जठर काम का एक स्थान होता है ऐसा छोटा, वो सारा भोजन जठर में आता है, फिर जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। तो आपने खाना खाया, सारा खाना जठर में आया, उसमें अग्नि प्रदीप्त हुई, वो अग्नि भोजन को पचाती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अब अग्नि भोजन को जब पचाती है, डाइजेस्ट कराती है, उसी समय आप गठागठ पानी पी लेते और खूब ठंडा पानी चिल्ड वाटर पी ले। परिणाम परिणाम होता है अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि अगर शांत हो जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन करेगा और कड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा और उस विष में से 103 रोग पैदा होंगे और जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। आप बोलेंगे फिर पानी कब पीना, 1.5 घंटे बाद पीना। 10 बजे खाना खाया, भोजन किया, 11:30 पर पानी पीना, 11 बजे दिया तो 12:30। क्यों? ये जो अग्नि बनती है जठर में ये 1 घंटे 30 मिनट रहती है, फिर उसके बाद शांत हो जाए। तो जब अग्नि शांत हो उस समय पानी पीना अच्छा होता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के पूर्व पानी पिए या पहले पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 10 बजे भोजन करना है, 9:12 से पानी पी सकते, कितना भी पी सकते हैं। बाद में पीना है तो 1.5 घंटे में, ठीक है। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या? मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट से मतलब भोजन करते करते आपको खांसी आ गई, खोखला, अभी भोजन गले में फंस गया तो पानी पीना थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। भोजन करते समय छींक आ गया, अभी भोजन आपका फंस गया, थोड़ा पानी पीना। जाते में थोड़ा, एक घूंट दो घूंट पर। भोजन के अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए, भोजन के पूर्व में 48 मिनट पर पानी पिए, भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पी सकते हैं जब कोई जरूरत पड़े, और आखिरी बात कि भोजन के अंत में कुछ और पीना, पानी नहीं। आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पीना हो तो ताक पीना, ताक मजीदे सक्रम, ताक मजीदे छाछ लस्सी ये पीना। और दूसरी कोई चीज पी सकते हैं भोजन के अंत में तो जूस पीना, जूस कोकम का जूस पी सकते हैं, बहुत अच्छा गोवा में मिलता है। मौसमी का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, द्राक्ष का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, कोई भी जूस पीना। और भोजन के अंत में दूध पी सकते हैं, दूध मिल्क। लेकिन इसका एक नियम बना रहा आयुर्वेद में कि रात्रि को भोजन करें डिनर तो हमेशा उसके बाद दूध पीना, दोपहर को भोजन करें अर्थात लंच तो हमेशा मज्जिगे ताक छाछ आदि आदि पीना, और सुबह जब भोजन करें ब्रेकफास्ट तो हमेशा जूस पीना। सुबह भोजन के बाद जूस, दोपहर भोजन के बाद मज्जिगे और ताक रात्रि भोजन के बाद दूध। जो व्यक्ति ये 3 बातों को फॉलो कर सकता है जिंदगी भर निरोगी रहेगा, रोग ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है आप सोच। थोड़ा अपना हमको ज्ञान मिला तो हम लाइफ लॉन्ग डिजीज फ्री रह सकते, कितनी अच्छी बात है। मैं इस नियम का पालन पिछले 20 साल से करता और अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट नहीं हुआ, बल्कि जो एडमिट होते हैं मैं उनको भगा भगा के लाता हूँ, चलो अपने घर में, ये डॉक्टर का क्लिनिक रहने के लिए थोड़ी। और अपने मरण पूजनीय स्वामी रामदेव जी है ना, वो तो अपने विद्यार्थी जीवन से ये नियम फॉलो करते हैं। स्वामी जी गुरुकुल में अभ्यास किया है, आपको मानती है, तो वो गुरुकुल जीवन से ये नियम पालन करते हैं और अभी तक बीमार नहीं। हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, वो मुझे बार बार फोन करते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई एक न्यूज हमको चाहिए। मैं पूछता हूँ कौन सा न्यूज चाहिए, वो कहते हैं बाबा कब बीमार पड़ा ये न्यूज चाहिए। मैं पूछता हूँ इस न्यूज का क्या करने वाले हो, वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापने वाले हैं, बाप लगा। ये पत्रकारों का न्यूज ऐसा ही होता है, बाबा कब बीमार पड़ा। मैं बोला ये न्यूज आपको कभी नहीं मिलने वाला, हाँ जीवन भर इंतजार करो, क्योंकि बाबा बीमार पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करते। आप भी करो, क्या प्रॉब्लम है? नियम तो सिंपल है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, बस डेढ़ घंटे के बाद पीना, पहले पीना है दौड़ता नहीं सुनने से, और खाने के तुरंत बाद पीना है तो ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मजे के साथ आगे आगे डिनर में दूध। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे वो ये कि मछली में तो पानी है, ताक में तो पानी है, दूध में भी पानी है और जूस तो पानी ही पानी है, तो आयुर्वेद जूस पीने को बोलता है और पानी पीने को मना करता है, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको समझना चाहिए। ये जो पानी होता है ना, पानी इसके अपने गुण होते हैं, पानी के गुण है, पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है। अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पानी की है, लेकिन पानी के ये सारे गुण तभी तक पानी में होते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पानी को आपने दही में मिलाया, ताक में लिया, अब इसमें पानी के गुण समाप्त हो गए, दही वाले गुण आ गए। पानी को आपने दूध में मिलाया तो अब पानी के गुण समाप्त हो गए, दूध वाले गुण उसमें आ गए। पानी को आपने जूस में मिलाया तो पानी के गुण समाप्त हो गए, अब उसमें फल के सारे गुण आ गए। इसलिए जूस पी सकते हैं, लस्सी मजीबे तक्रम आदि आदि पी सकते हैं, ताक पी सकते, दूध पी सकते, पानी डेढ़ घंटे बाद पी सकते। हुआ ये एक नियम आयुर्वेद का, पालन कर सकते हैं, करेंगे ना? योग प्राणायाम तो करना हर को बोलना है, इसको भी आप फॉलो करेंगे। अब दूसरा नियम है वो ये आयुर्वेद का कि पानी जब पीना हो तो सिप सिप करके पीना, जैसे गर्म चाय पीते हैं कैसे पीते हैं, एक सिप, दो सिप, तीन सिप, ऐसे पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घूम घूम पानी पीना, एक साथ जटाकर पानी नहीं पीना। आप पूछेंगे क्यों? हमारे मुंह में लार बनती है, लार अंग्रेजी में जिसको हम लार्वा कहते हैं, तरीवा कहते हैं, हिंदी में लार कहते हैं, शायद मराठी में भी लार कहते हैं, लारी कहते हैं, मुंह में लार बनती है और ये 24 आवर्स बनती है, 24 साल इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होता, अद्भुत फैक्ट्री है, चलती रहती है, चलती रहती। ये जो लार बनती है मुंह में, ये लार को जब हमने केमिकली टेस्ट किया तो ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और हमारा जो कोड है ना पेट, इसमें अम्ल बनता है एसिड, तो पेट में एसिड है, मुंह में लार है, मनु क्षार है, अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया मुंह का लार बार बार पेट में जाएगा तो पेट के अम्ल को शांत कर देगा, इसलिए पानी घूप घूप पीना, सिप सिप करके पानी पीना। अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी पशु को देखो, गाय को देखो, मशीन को देखो, वो खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीते। गाय खाना खाती है, खूब पेट भर के खाना खाती है, खाना खाने के बाद बैठ जाती है, फिर मुंह चलाती है, जुगाली करती है और 2 तास निरंतर पानी पीती है। पक्षी को देखो, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगते हैं, फिर उड़ जाते हैं, 2-3 घंटे बाद वापस आते फिर पानी पीते। और सभी पशु पक्षियों को देखो, पानी सिप सिप करके पीते, पक्षी को देखेंगे पानी पीते हुए, एक ड्रॉप पानी का उठाता है, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाता है, फिर पीता, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर ऐसे ऐसे, फिर तीसरा ड्रॉप, एक ही ड्रॉप पानी पीते हैं सभी पक्षी। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता, शेर को देखो, चाट के पानी पीता, सभी पशु पक्षी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी भी पक्षी को मैंने ओवर वेट नहीं देखा, कोई पक्षी ओवर वेट नहीं, और किसी पक्षी का पेट बाहर नहीं आता, तो उन बाहरों में आते थे जो आयुर्वेद के पक्के पालन करने वाले हैं वो लोग। आप भी करो, आप भी बिजनेस फ्री हो जाओ, ये दो नियम है। तीसरा नियम आयुर्वेद का है वो ये कि सुबह सुबह जब हम सो कर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना, ब्रश रात को करके सोना, पहले रात को ब्रश करके सोना, सुबह उठते ब्रश नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं डालना, पानी पीना, क्योंकि रात को जो सुहांगा मुंह में जमा हुआ है लार ये अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का मुंह का जो लार है ना ये सबसे ज्यादा कीमती होता है। आपको महती है अमेरिका में मुंह के लार को बेचा जाता है, अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है वो बिजनेस करती है मुंह के लार का। और हमारे देश में जैसे शैंपू का सेशन मिलता है ना, अमेरिका में लार का सेशन मिलता है 5 मिलीग्राम/1000 रुपए का। मैंने उस कंपनी को कॉन्टेक्ट किया था, पूछा था कि कहां से आप प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने कहा इसका कोई मशीन नहीं है हमारे पास, हम अमेरिकन लोगों को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा पाक रखते हैं, कहते इसमें छूको तो वो आके थूकते हैं, हम उसको शैशे में पैक करते देखते हैं और एक 5 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का मिलता। मैं पूछा कौन खरीदता है आपका ये शैशे, तब उन्होंने सीरियसली बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं दुनिया में जिनको लार बनना बंद हो जाती है। आपको मैं जब कैंसर होता है ना, कैंसर कैंसर का जब 4th स्टेज शुरू होता है तो मुंह में लार बनना बंद हो जाता है, तो कैंसर पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, कुछ भी खिलाओगे उसको वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, क्योंकि लार नहीं है। तो कैंसर पेशेंट ये शैशे खरीदते हैं लार का और मुंह में डालते हैं और वो एक शैशे 10,000 रुपए का आता है, कितना कॉस्टली है। और ये लार आप सोबत में थूकते रहते हैं अपने देश, कितना नुकसान कर रहे हैं आप। ये लार थूकने को नहीं है, ये खाने के लिए, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। आपको भी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा, मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी थूकता नहीं, देख लो आप, ये मनुष्य है जो छू 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 अपना भी नुकसान देता है, सारा कचरा कर देता है, सड़क खराब कर देता है, बीमार जिंदगी कर देता है। अकल नहीं है इस मनुष्य को, आज के बाद कभी किसी को गाड़ी नहीं देना, तू जानवर है, गाड़ी देना तू मनुष्य है, अकल नहीं। जानवरों को तो आपसे ज्यादा अकल है, वो छूटते नहीं, आप भूखू में चलते हैं, बहुत नुकसान करते हैं आप अपना, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, छूट दिया आपने 10,000 रुपए चला गए, छूटना नहीं इसको, पीना कैसे पियेंगे, उठते ही पानी पियो। अब इसके 2 फायदे हैं, पहला फायदा ये है सुबह उठते ही जब आप पानी पियेंगे सारी लार अंदर चली जाएगी, वो पानी सुबह का पता है लार दिन के टाइम में जाता है, क्योंकि पेट खाली रहता है ना सुबह, तो सीधे पानी लार्जिन सिस्टम में चला जाता है, पानी लार्जिन सिस्टम को साफ करता है। और आपको मालूम है लार्जिन सिस्टम में मल रहता है एक्सक्रीटा, तो मल की सफाई जब ये पानी करता है तो आपको प्रेशर आता है और आप टॉयलेट में जाते हैं 2-3 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जिनको सुबह 2-3 मिनट में सब फ्रेश होता है, मन पेट साफ होता है, संगात आती है 2-3 मिनट में, उनको लाइफ में कोई रोग नहीं आता, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। ये तीसरा नियम, कितना पानी पीना, कम से कम 3 गिलास, प्यास नहीं लगती तो पहले 1 गिलास पीना, दूसरे दिन 1.5 गिलास पीना, फिर 2 करना, फिर धीरे धीरे 3 करना, छोटे बच्चों को 1 गिलास, बड़े लोगों को 3। और चौथा आयुर्वेद का नियम है कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड वाटर कभी नहीं पीना। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है,
हमारे आयुर्वेद में ठंडे पानी का डेफिनेशन है, जो पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वो पानी ठंडा, अर्थात रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ डालकर आइस मिक्स करके कभी भी पानी नहीं पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है और बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री का होता है, कभी नहीं पीना, गंदगी से भी नहीं पीना, तोकन का पानी पीना, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, सारा पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना, कारण बताता हूं। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, अब ठंडा पानी आपने गर्म पेट में डाल दिया तो झगड़ा शुरू होता है, ठंडे पानी में और गर्म पेट में, उस झगड़े में क्या होगा, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लीजिए पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पेट और हृदय का कनेक्शन है, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे हो जाएंगे और आप ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है ठंडा पानी। और होता क्या है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो पोर्स जो है ना पानी को गर्म करता है, जब पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पानी गर्म करने की, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, रक्त में से आएगी, खून में से आएगी, तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी को गर्म करने के, और आपने दिन में 10 बार ठंडा पानी पिया, सारे शरीर का रक्त 10 बार पेट में आएगा, शरीर के दूसरे अंगों को रक्त की कमी ना चाहिए, आप बहुत खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। ब्रेन को अगर 3 मिनट रक्त ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है, हर्ट को 1 मिनट रक्त की सप्लाई होते तो हर्ट खत्म हो जाए, इतना रिस्क मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए। और एक रिसर्च हुआ है सारी दुनिया में, वो रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है, वो रिसर्च ये है कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं चिल्ड वाटर, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो बंद हो जाता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ओपन पाइप के जैसा होता है, ऐसा फील जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं चिल्ड वाटर ये बंद हो जाता है, और लाल इंटेस्टाइन अगर बंद हुआ तो सुबह संध्या साफ नहीं होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, और उसमें से 100 ऑफ डिजीज आए, मत पीना। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत ठंडा पानी पीते चिल्ड वाटर, आप देखेंगे अमेरिकन लोग क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें आइस क्यूब डालते, फिर कितना ठंडा पानी है। तो अमेरिकन लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन सभी के बन ज्यादा है, तो सुबह जब वो टॉयलेट रूम में जाते हैं 1-1 घंटे बाहर नहीं आते, और उनको मैं पूछता हूं क्या करते हो टॉयलेट रूम में 1 घंटा, वो कहते हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं न्यूज पेपर, वो कहते हैं संजात नहीं होती, टाइम पास करना पड़ता है, इसलिए न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि जो अमेरिकन टॉयलेट रूम होते हैं उसमें लाइब्रेरी क्यों होती, क्योंकि उनको टाइम पास करो, और बेचारे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि टॉयलेट पॉट पे बैठते जाते हैं लेकिन संजाती नहीं होती, फिर पूरी ताकत लगाते हैं, फिर बेचारे गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं, और ज्यादा तकलीफ होती है ना तब दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आ जा एक अमेरिकन व्यक्ति को मैंने कभी पूछा था कि आपके टॉयलेट रूम में कमोड सीट क्यों बनाते, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं बनाते, तब उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, اس نے کہا انجن اس ٹائپ کے ٹارگیٹ پاس پہ 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، مجھ کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے میں اس کو کمر سیٹ کرسی کی طرح سے بنا کے آرام سے بیٹھ جاتا اور ماحول پڑتا ہے. یہ ہے ان کی سمسیا. اور یہ جو سیریس پرابلم ہے نا امریکہ میں، وہ یورپ میں کتنی سیریس ہے کہ جب آپ کو کوڑ صاف نہیں ہوگا نا، گندا صاف نہیں ہوگی تو آپ کے سانس میں بدبو آنے لگے. اب سانس میں بدبو آئے گی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چوئنگ گم کھاتے ہیں، اور ایک کیمیکل ہوتا ہے لسٹرین، وہ منہ میں اسپرے کرتے رہتے ہیں کیونکہ سانس کی بدبو کو روکنا. پھر اگر سانس کی بدبو ہوگی تو کبھی منہ میں بدبو آتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیو گرین اسپرے کرتے ہیں، لیکن مورکھوں کے مورکھ کو صاف نہیں کرتے. یہ سمپل کام ہے کوڈ صاف کریں، وہ نہیں ہوتا ہم سے کیونکہ ٹھنڈا پانی چلڈ واٹر پیتے رہتے ہیں. تو آپ کو ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں کبھی نہیں پینا یہ ٹھنڈا پانی، نہیں تو آپ کو بھی سنڈا گھر میں ایک ایک صاف کرنا پڑے گا اور دنیا کا سارا ریسرچ وہی کرنا پڑے گا. یہ 4 نیم آیوروید کے ہیں، پھر سے دوہرا دیتا ہوں، کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پینا، پانی ہمیشہ خشک کر کے پینا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پینا، اور ٹھنڈا پانی نہیں پینا، نارمل پانی پینا مٹی کے گھڑے کا، نہیں تو تازہ پانی پینا. سردیوں کے دن میں پانی کو گرم کر کے پی سکتے ہیں، گنگنا کر کے پی سکتے ہیں. جو لوگ 4 نیم فالو کریں، بعد پت کف ان کا سنتلت رہے گا، لائف ڈسیز فری رہے گی، اور سردی بھون سے سوکھنے کا سدھان سب سے سچ ہو جائے. 3 باتیں اور مجھے کہیں گے آپ سے جو آپ کے لائف اسٹائل سے جڑی ہیں. آیوروید یہ کہتا ہے کہ بعد زندگی میں کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ یہ 4 کو پانی کا نیم فالو کریں. اور ایک بات اور دھیان رکھیں، تیل شدھ کھانا، شدھ تیل کھانا. شدھ تیل کا مطلب، شدھ تیل کا مطلب جو تیل آپ اپنے آنکھوں کے سامنے نکلواتے ہیں وہ تیل شدھ ہے. جیسے آپ شنگان کا تیل کھاتے ہیں، شنگان دیکھے جائے تیل اپنی آنکھوں کے سامنے نکلواتے جائیں. آپ ناریل کا تیل کھاتے ہیں، ناریل دیکھے جائیں اور تیل نکلواتے اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، یہ تیل شدھ ہے. پھر آپ بولیں گے بازار میں جو تیل آتا ہے، ڈبا بند تیل آتا ہے، وہ شدھ نہیں ہے کیونکہ بازار کے سبھی تیل میں ملاوٹ ہے. شدھ تیل کوئی بازار میں نہیں ملتا. آپ کو معلوم ہے بازار میں جتنا تیل آپ خریدتے ہیں اس میں ایک تیل ملاتے ہیں پامولین آئل، اور یہ پامولین آئل سب سے خطرناک تیل ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ کھایا نہیں جاتا، کیونکہ اس کو باڈی ڈائجسٹ نہیں کر سکتی. پامولین آئل کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر 42 ڈگری سینٹیگریڈ ہونا چاہیے، اور ہمارے باڈی کا اندر کا تاپمان 37 ڈگری سینٹیگریڈ ہے، اس لیے پامولین آئل کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو وہ آئل فیٹ کے روپ میں جمع ہوتا ہے، اور وہ فیٹ بڑھا کے آپ کو ہارٹ اٹیک تک لے جاتا، اس لیے بازار کا تیل مت کھائیں. پھر کم کا تیل کھائیں، تیل خود نکلوائیے اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ تیل ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود نکلوایا. پھر آپ بولیں گے ہم جو تیل کھائیں گے وہ بہت گھٹ ہے، گاڑا ہے، بالکل چنتا مت کریے. تیل میں یہ جو چکنائی ہوتی ہے، گاڑا بن ہوتا ہے، اسی میں سارا پروٹین ہے. تیل کا جو پروٹین ہے نا، وہ اس کی چکنائی میں ہے، گھٹ پن میں ہے، گاڑے پن میں ہے. تیل میں سے اگر چکنائی نکال دیا تو پروٹین نکل گیا، پروٹین نکل گیا تو وہ تیل تو پانی سے بھی زیادہ خراب ہے، مت کھائیے. ہمارے بازار میں ایک تیل آتا ہے جس کو ریفائنڈ تیل کہتے ہیں، اور ایک ڈبل ریفائنڈ، اس میں سارا چکنائی نکال دیتے ہیں، وہ تیل بالکل تھرڈ کلاس ہے، سب سے بکواس ہے، مت کھائیے. تب بولیں گے ڈاکٹر کو الٹا بتاتا، ڈاکٹر کو الٹا اس لیے بتاتا ہے اس کو تیل کے بارے میں ماہیتی ہی نہیں. یہ جو ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر ہیں نا، ان کو تو کچھ ماہیتی نہیں ہوتی، یہ پڑھتے نہیں اپنی پڑھائی میں، نہ یہ تیل کے بارے میں پڑھتے ہیں نہ بھوجن کے بارے میں پڑھتے ہیں. تیل میں جو چکنائی ہے، وہ چکنائی شریر کو بہت آوشیک ہے، نہیں تو یہ چلے گا نہیں شریر آپ کا، یہ گھٹنے جام ہو جائیں گے، سارے فنگر جوائنٹ جام ہو جائیں گے. چکنائی تو چاہیے، اچھی والی چاہیے. چکنائی 2 طرح کی ہوتی ہے، فیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہائی ڈینسٹی اور ایک لو ڈینسٹی. جو لو ڈینسٹی والے ہیں وہ خطرناک ہے, ہائی ڈینسٹی والے تو اچھے ہیں. اور سبھی تیل میں ہائی ڈینسٹی والے پیک ہیں شدھ تیل, اس لیے وہ کھائیے, چنتا مت کریے, کوئی اٹیک نہیں آنے والا آپ کو. یہ ڈبل ریفائنڈ ٹرپل ریفائنڈ تیل لانا بند کر دیں. پھر آپ بولیں گے شدھ تیل ملنے کے لیے کیا کرنا, مشین ایک لگا دو, 50,000 روپے کا مشین آتا ہے تیل نکالنے والا, وہ ناریل کا بھی تیل نکالتا ہے, شیرا کا بھی تیل نکالتا ہے, تیل کا بھی تیل نکالتا ہے, سرسوں کا بھی نکالتا ہے, ایک ہی مشین میں سب تیل نکالا ہے, ایک لگاؤ فون ڈالو سب کے کام آئے گا. اور وہ مشین 10 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا اس میں لگ جاتا ہے آرام سے. مشین کہاں ملتا ہے, اپنے بھارت سوالمان کے گجرات کے بہت سارے کارکرتا وہ مشین بناتے ہیں راجکوٹ میں, جب آپ بولو گے وہ وہاں سے بھیج دیں گے, یہاں ایک مشین لگا لو, بہت پنیہ کا کام ہے شدھ تیل لوگوں کو دینا. تیل جس دن شدھ ہو جائے گا بعد کے سبھی روگ آپ کے جیون سے ختم ہو جائیں گے. تیل شدھ کھائیے, یہ پہلا کام. دوسرا گھی شدھ کھائیے, گھی شدھ مطلب گائے کے دودھ کا دہی بنا کے, دہی میں سے ساگ بنا کے, ساگ میں سے مکھن نکال کے, مکھن کو گرم کر کے جو سوپ بنتا ہے وہ شدھ سوپ کھائیے. مشین کا مت کریں, مشین کا سوپ آپ ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. آیوروید میں کہا گیا مشین کا سوپ صرف انہیں کھانا چاہیے جو کشتی رہتے, پہلوانی کرتے, دنڈ بیٹھک لگاتے, ان کو مشین کا سوپ کھانا چاہیے, باقی سبھی کو گائے کا سوپ کھانا چاہیے. شدھ گائے کا سوپ کھائیے, لائف میں کبھی بھی پتھ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور تیسرا نیم ہے آیوروید کا کہ شکر کھانا بند کر دیجیے, گڑ کھائیے. گڑ کے بعد اور ایک اچھی چیز ہے کاکنی کھائیے. گڑ اور کاکنی جتنا کھائیں گے اور شکر جتنا بند کریں گے کف کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ بتاتا ہوں, آپ چاہیں تو آج ہی فالو کریے اس کو. آپ میں سے کسی کا بھی ویٹ زیادہ ہے, اوور ویٹ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ویٹ کم کرنا ہے, اور ویٹ کم کرنے کے لیے آپ شکایت کر رہے ہیں کہ یوگ بھی کرتے ہیں, پرانایام بھی کرتے ہیں, ویٹ کم نہیں ہو رہا ہے, ویٹ کم نہیں ہو رہا. بہت لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہم پرانایام کرتے ہیں پھر بھی ویٹ کم نہیں ہو رہا. آپ صرف اتنا کریے, شوگر چھوڑ دیجیے, شوگر کی کوئی چیز مت کھائیے, دیکھیے کتنا جلدی آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے. 3 مہینے میں 15-20 کلو تک ویٹ کم ہو جاتا ہے شوگر کی سب چیزیں بند کر, کیونکہ یہ شوگر ہے جو کف کو وکرت کرتا ہے اور کف کی وکرتی سے وزن بڑھتا ہے. اور شوگر آپ کو معلوم ہے چینی, اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے, شوگر میں کوئی وٹامن نہیں ہے, نہ تو کوئی پروٹین ہے نہ تو کوئی وٹامن ہے, ہے کیا اس میں, صرف سواد ہے اور کچھ نہیں. اور سواد بھی اتنا خطرناک ہے, اس میں سب سے خراب جو ہے سلفر, اور شوگر بنا سلفر کے بنتا نہیں, اور یہ سلفر شریر میں آئے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اور ویسے بھی شوگر 50 روپے کلو ہو گیا, کیوں دماغ خراب کر کے ہٹائیے نا سر. گڑ لگائیے, گڑ گڑ بہت ملتا ہے, گوا میں بھی ملتا ہے, مہاراشٹر میں تو گڑ ہی گڑ ہے, کولہاپور دنیا کا سب سے بڑا گڑ کا پروڈکشن سینٹر ہے کولہاپور, سانگلی, ستارا, کچن کریں گی, یہ سب علاقے میں گڑ ہی گڑ ہے, مزہ نہیں ہوئے. اور گڑ جب لائیں تو دیکھ کے لائیے گا, گڑ زیادہ سفید زیادہ پیلا نہیں لینا, کالا کالا لینا, زیادہ کالا ہو زیادہ لال ہو وہ گڑ اچھا ہوتا ہے, وہ شکر ہے. یہ زیادہ سفید گڑ جو ہے نا نرما واشنگ پاؤڈر سے بنتا ہے, مت لینا کبھی, جلدی سے بھی مت, خراب ہے, بہت خراب. تو چینی ہٹائیے, گڑ لائیے, کف کی بیماری ختم ہوگی, دودھ گائے کا کھائیے, پتھ کی بیماری نہیں آئے گی, اور تیل شدھ کھائیے, بات نہیں ہوگا. اتنا آسان ہے ڈسیز فری ہونا, نروگی ہونا. ہم چاہتے ہیں بھارت کا ہر ویکتی روگ مکت ہو, سوستھ ہو, تندرست ہو, تو وہ دیش کے لیے اپیوگی ہوگا, جو خود کے لیے کام کرے گا دیش کے لیے کام کرے گا, تب جا کر دیش کا کچھ بھلا ہوگا. اور ایک آخری سجیشن ہے میرا, بہت سیریس سجیشن ہے, آپ کے گھر کا میٹ بدل دیجیے. جو میٹ آپ کھاتے ہیں نا بازار سے لا کے, آیوڈین یوکت, یہ خطرناک ہٹا دیجیے. تو آپ بولیں گے کون سا میٹ کھائیں, وہ میٹ کھائیے جس کو سیندھم لبن کہتے ہیں, وہ میٹ کھائیے جس کو کالا نمک کہتے ہیں بلیک سالٹ, وہ میٹ کھائیے جو کیوبک فارم میں آتا ہے ایسے دینے لینے جیسا ہوتا ہے, یہ پاؤڈر والا میٹ مت کھائیے. کیونکہ یہ جو آیوڈین یوکت میٹ ہے نا اس میں دو کیمیکل ملاتے ہیں, ایک کیمیکل کا نام ہے پوٹیشیم آیوڈیٹ اور دوسرے کیمیکل کا نام ہے ایلومینیم سلیکیٹ, یہ دونوں ہی کیمیکل پوائزن ہے زہر مت کھائیے. پھر آپ بولیں گے تو میٹ میں آیوڈین نہیں ہوگا, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بنا آیوڈین کا کوئی میٹ ہی نہیں ہوتا, سبھی میٹ میں آیوڈین ہے. یہ جو سینٹر میٹ ہوتا ہے اس میں بھرپور آیوڈین ہے, کالا میٹ ہے اس میں بھرپور آیوڈین, اور آپ آیوڈین بتائے کہاں کہاں سے لیتے ہیں. ہم رات میں اور صبح ہر دن دال کھاتے ہیں, جو شاکاہاری لوگ دال کھاتے ہیں آدھا کٹوری دال کوئی بھی کھائے گا اس کو ایک دن کی ضرورت کا پورا آیوڈین مل جائے, دال میں سب سے زیادہ آیوڈین, بھاری پالا جتنا ہے سب میں آیوڈین, تو آیوڈین کی کوئی کمی ہمارے شریر کو نہیں ہے, اس لیے یہ آیوڈین یوکت میٹ کھانے کی ضرورت نہیں. اور یہ آیوڈین یوکت میٹ مہنگا بھی بہت ہے, 12 روپے کلو سارا میٹ لائیں گے وہ بہت سستا ہے. ہمارے گھروں میں پہلے وہ میٹ آتا تھا نا کیوبک فارم کا, اس کو دھو کر سکھا کر ہم استعمال کرتے تھے, وہی سب سے اچھا ہے. اب آپ مجھے پوچھیں گے کیوں, میں آپ کو سنکیت میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ایلومینیم سلیکیٹ نام کا کیمیکل میٹ میں ڈالا جاتا ہے یہ لبن سختا پیدا کرتا ہے, یہ سب سے خطرناک کیمیکل ہے. اور بھارت میں پچھلے 20-25 میں لبن سختا کا پرمان بہت تیزی سے بڑھا ہے, کیونکہ سب کے گھروں میں یہ آیوڈینیو میٹ آ گیا. اس کا ایکسپریمنٹ ہم نے جانوروں پہ کیا تھا, پشوؤں پہ کیا تھا, گائے اور مچھلی کو آیوڈین یوکت میٹ کھلا دو وہ کبھی بھی گرب دھارن نہیں کرتی, اور جیسے ہی اس کا میٹ چینج کرتے ہیں اس کو سیندھم میٹ کھلانا شروع کرتے ہیں وہ گرب دھارن کر لیتے. ہمارے دیش میں 40% کا گائے اور بھینس اس آیوڈین میٹ کے کارن نپنسک ہو گئی, بانج ہو گئی, اور پھر پرنام اس کا کیا ہوتا ہے وہ گرب دھارن کرتی ہے, شیتکری وہ کسائی کو بیچ دیتا ہے, کسائی قتل خانے میں جا کے کاٹ دیتا ہے, اس لیے گائے اور مشین جاتی کٹ رہی ہیں اس سے, کیونکہ وہ گرب دھارن نہیں کرتا ہے. اور گرب دھارن نہیں کرنے کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے ایلومینیم سلیکیٹ جو ڈالا جاتا ہے آیوڈینیم سلیکیٹ. اور میں آپ کو ایک خراب بات کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے کسی بھی دیش میں آیوڈین یوکت میٹ نہیں دکھتا, بھارت کو چھوڑ کر, امریکہ میں نہیں, جرمنی میں نہیں, فرانس میں نہیں, سویڈن میں نہیں, سوئٹزرلینڈ میں, اپنے دیش میں نہیں, وہ دیش یہاں بیچا جا رہا ہے, شاید کوئی بڑا شڑیتر چل رہا ہے اس دیش میں, اور وہ بڑا شڑیتر یہی ہے کہ سب کو زبردستی آیوڈین یوکت میٹ کھلایا جائے, تھوڑے دن میں بھارت کی لوک سنکھیا کم ہونا شروع ہو اور بڑے پیمانے پر ودیشی لوگ آ کر پھر لوٹیں. یہ جو آیوڈین یوکت میٹ کا سوال ہے نا, اس پر ہم بھارت سرکار کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں. پہلے وہ مقدمہ ہم نے لڑا تھا ممبئی ہائی کورٹ میں, وہاں ہم جیت گئے, سرکار ہار گئی, اب وہ مقدمہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تھوڑے دن میں اس کا فیصلہ آنے والا ہے, اور ہمیں وشواس ہے ہم جیتیں گے, سرکار ہارے گی, کیونکہ سرکار کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے کہ بھارت کے کس ویکتی کو آیوڈین کی کمی ہے جس کو یہ میٹ کھلا رہا ہے. ہم نے کسی کو آیوڈین کی کمی نہیں, وہ بھی نہیں سکتی, کیونکہ ہم ڈیلی دال کھاتے ہیں, جو لوگ روز دال کھاتے ہیں ان کو آیوڈین کی کمی کبھی نہیں ہوتی, جو روز بھاجی پالا کھاتے ہیں ان کو آیوڈین کی کمی ہو نہیں سکتی, اور جو دریا کے کنارے رہتے ہیں ان کو تو کبھی بھی آیوڈین کی کمی نہیں ہو سکتی, کیونکہ سمندر کے پانی میں سب سے زیادہ آیوڈین ہے. ہم نے سرکار کو اس کیس کے لڑنے کے کرم میں یہ پرشن کیا تھا کہ بھارت میں کتنے لاکھ لوگ ہیں جن کو آیوڈین کی کمی ہے, سرکار ابھی تک وہ ماہیتی کورٹ کو نہیں دے پائی, कितने लाख लोग हैं, कितने कोटि लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी, अभी तक माहिती कोर्ट में नहीं दिया सरकार ने, 6 साल हो गए क्यों नहीं दिया, क्योंकि किसी को आयोडीन की कमी नहीं है इस देश में, माहिती कहां से देंगे। तो आप बोल रही है ये साजिश क्या हो रही है, ये साजिश एक तो है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य खराब करना, जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिलाते, दूसरा 25 पैसे किलो के मीट को 12 रुपए किलो बिकवाना, ये वो साजिश। मीट को 25 पैसे किलो में बनता, आयोडीन युक्त करने के नाम पे 12 रुपए किलो बिकता, सब लोग तकलीफ में है उस मीट को खाते। तो मेरी आपको विनम्र विनती है कि आप ये हटा दीजिए अपने घर से, तेजा मीट लाइए, काला मीट लाइए, वो खाइए, अपने घर को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और अगर आप जानवर पालते हैं गाय और मछली, तो ध्यान दीजिएगा गाय और मछली को हमेशा तेजा मीट ही खिलाइए, नहीं तो वो गर्भधारण नहीं करेगी। और दो तीन छोटी छोटी बातें मुझे करनी है, ये तो हुआ स्वास्थ्य के बारे में कि हम स्वस्थ रहें तो क्या क्या करें। अब एक बात मुझे ये कहनी है कि देश को भी स्वस्थ रखना, अपने देश को भी कई बीमारियां हो गई और उन बीमारियों को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे देश की बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके बाहर वाला ठीक नहीं करेगा। अपने देश को कुछ बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है गरीबी। भारत में गरीबी कितनी है, भारत में 120 कोटि नागरिकों में 84 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते, 50 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते, 25 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 5 रुपए नहीं खर्च कर सकते, 15 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, और 10 कोटी नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 50 पैसे खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी इस देश में, गरीबी कितनी भयंकर है इस देश में मैंने मेरे जीवन में देखा है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है, 3 लाख किलोमीटर मैं यात्रा कर चुका हूँ। मैं एक बार उड़ीसा गया था और उड़ीसा में मैंने देखा गरीबी कितनी है। उड़ीसा में कालाहांडी नाम का एक जिला है, उस कालाहांडी जिले के एक गांव में मेरा व्याख्यान हुआ था, 10 वर्ष पहले की घटना है। मैं जब व्याख्यान देने के लिए उस गांव में गया तो मेरा व्याख्यान सुनने के लिए 3 लोग आए थे, एक मैं था अपना व्याख्यान सुनने खुद आया था, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला, 3 लोग आए। मैंने माइक वाले भाई को कहा कि व्याख्यान किसको देना, यहां तो कोई नहीं आया, तो उसने कहा मैं सामने बैठ जाता हूँ, मुझे बोलो, मुझे व्याख्यान दो। मैंने कहा बाकी लोग, तो उसने कहा बाकी लोग तो घर में बैठ के सुनेंगे, मैंने माइक ऐसा प्रेस किया है कि सबके घर में आवाज जा रही है। मैंने कहा फिर वो सामने आके क्यों नहीं सुनते जो घर में सुन सकते हैं। तब उसने मायूस होकर कहा कि वो आपके सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं। तब मुझे अंदाजा लगा कि इतनी गरीबी है उसके। मैं उस गांव के सरपंच के घर में गया था गरीबी देखने के लिए, तो सरपंच के घर में 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक झोपड़ा था टूटा हुआ, उसमें पानी टपकता था जले जले से। सरपंच को हमने बाहर बुलाया तो उसकी पत्नी बाहर आई थी, तो मैंने देखा कि वो आई के शरीर पर छोटा सा एक कापड़ था जिसको लपेटा था उसने नीचे, ऊपर तो कोई कापड़ नहीं था और वो नीचे वाला कापड़ भी पर्याप्त नहीं था, पूरा नहीं था। फिर मैंने उसको कहा आप अंदर जाओ अपने पति को बाहर भेजो, तो उसका पति बाहर आया थोड़ी देर में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो वही कापड़ लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई। और ऐसी गरीबी में भारत के 37 कोटी नागरिक रहते हैं जिनके शरीर पर 2 कापड़ हैं, और इस गरीबी के कारण पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की गरीबी के कारण दुनिया में औसत गरीबी बढ़ रही है, भारत की गरीबी के कारण। संयुक्त राष्ट्र महासंघ हर साल गरीब देशों की एक सूची बनाता है, उस सूची में 88 देश आते हैं, उनमें भारत का नंबर 70वां है, 70th। माने हमसे जाति गरीब सिर्फ 18 देश में दुनिया, बाकी सब हमसे अमीर है। और हमसे जाति गरीब देशों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो हमारा ही हिस्सा है। इस गरीबी के बारे में बहुत हम लोगों ने अभ्यास किया कि ये क्यों है हमारे देश में। कई बार हमारे देश के कई लोग आपस में बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं, भारत में तो हमेशा से गरीबी रही है। थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा भारत तो हजारों साल से गरीब है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री थे, उनका नाम था पी चिदम्बरम, अभी वो गृह मंत्री हो गए। पी चिदम्बरम के साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था। इंदौर नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है नई दुनिया। नई दुनिया नाम के न्यूज़पेपर ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और उसके विमोचन समारोह में मैं गया था और चिदम्बरम भी आए थे। चिदम्बरम ने वहां भाषण दिया और 40 मिनट ये कहा भारत हजारों साल से गरीब देश है, भारत हमेशा से गरीबी में डूबा हुआ देश। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चिदम्बरम से एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया उसने। मैंने कहा भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो अंग्रेज इस देश में 250 साल झक मार रहे थे। अगर हजारों साल से गरीब देश है क्यों मारे? गरीबों के यहां कोई जाता है क्या? और वो भी 250 साल के लिए। और भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो पूर्व गांधी गोवा में 450 साल झक मारते थे, क्यों आए यहां पर? भारत अगर गरीब देश, अगर भारत हजारों साल से गरीब है तो क्रांति जी क्यों आए इस देश में? भारत अगर हजारों साल से गरीब है तो महमूद गजनवी क्यों आया कोरोना का मंदिर लूटने के? तैमूर लैन क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? गरीबों के घरों में कोई लूट का मान मिलता है क्या? हजार बार विदेशी लुटेरे इस देश में आए, अगर ये देश गरीब था तो क्यों आओ? और कुछ लुटेरे तो आकर यहीं पर रह गए, 250 साल के लिए तो अंग्रेज रह गए, 450 साल पुर्तगाली रह गए, फिर ये बाबे आया, बाबर के बेटे और उसके बेटे के बेटे 300 साल हो रह गए। तो ये तो मूर्ख थे क्या जो गरीब देश में आते रहे? हम किसी गरीब के घर में जाकर रहते हैं क्या? कभी कहते रहते हैं कि भारत हजारों साल से गरीब था। और ये चिदम्बरम और मनमोहन सिंह जैसे जो पॉलिटिशियन है ना, ये ऐसा दिमाग खराब कर रहे हैं पूरे देश का। गरीबी हजारों साल से, बेरोजगारी हजारों साल से इस देश में। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए हमने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए। उनमें से एक दस्तावेज है जो आपको कभी अभी सुनाता हूं, आपका चैनल पे वो सब मैं दिखाने वाला हूं थोड़े दिन में। हमारे देश में एक अंग्रेज आया, उसका नाम था थॉमस बैक मैकॉले। 1834 में आया इस देश। ये वही अधिकारी था जिसने शिक्षण लाया, अंग्रेजी शिक्षण। आप जो वार्ता कहते हैं ना मैकॉले शिक्षण, मैकॉले शिक्षण, मैकॉले शिक्षण लाने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था थॉमस बैलिंगटन मैकॉले। पूरा नाम उसका ये था टीजी मैकॉले। ये 1834 में आया। तो ये भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी काउंसिल का मेंबर बन गया। और उस जमाने में हमारे देश में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने इसको कहा मैकॉले को कि तुम पहले भारत को देख कर आओ, घूमो भारत में, सब जगह घूमो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे दिशाओं में घूमो और घूमकर पता करो, फिर मेरे पास काम करो। उस समय गवर्नर जनरल जो था ना हाईएस्ट पोस्ट थी, जैसे हम आज किसी को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, 1834 में वही पोस्ट गवर्नर जनरल हुआ करते। तो ऐसे समझ लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री विलियम बेंटिक, उसकी काउंसिल का कैबिनेट मिनिस्टर थॉमस बैक मैकॉले। तो ये मैकॉले ने कहा कि जब मैं भारत घूम के आता हूं, तो एक डेढ़ साल उसने भारत घूमने में लगाया। उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, लौट के आया। उस समय जो राजधानी थी भारत की वो कोलकाता में थी, कलकत्ते। दिल्ली का राजधानी तो 1911 में बना,
1911 से पहले भारत का राजधानी कलकत्ता में था। तो जब बापू का आया तो कोलकाता में एक मीटिंग हुआ,
किसका, गवर्नर जनरल उस मीटिंग में प्रेसाइड कर रहा था और उसके कैबिनेट के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे और मीटिंग का टाइम और डेट 13 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835 को ये मीटिंग हुआ कलकत्ता। इस मीटिंग में मैकॉले ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने कहा, आई हैव सीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए बेटर एंड थी इन दिस कंट्री। वो कह रहा है कि मैंने पूरा भारत प्रवास किया, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह गया, लेकिन एक भी व्यक्ति मैंने भारत में भिखारी नहीं देखा, एक भी व्यक्ति मैंने भारत में चोर नहीं देखा। फिर वो भाषण में आगे कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति भिखारी क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के पास धन और संपत्ति भरपूर है, कोई गरीब नहीं इसलिए भिखारी नहीं, और किसी के पास कमी नहीं है पैसे के इसलिए चोर नहीं। फिर वो कहता है आगे अपने भाषण में, सच वेल्थ आई हैव सीन इन द हाउसेज ऑफ इंडियन, वो कहता है लोग भारत के लोगों के घरों में मैंने इतना धन और इतनी संपत्ति देखी है, वह कारण मैं हमारे मुझे आंखों में चमक पैदा हो गई। फिर वो अपने भाषण में कहता है कि भारत के लोगों के घरों में जब मैं गया तो हर एक घर में मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। फिर वो कहता है कि मैंने भारत के किसी भी व्यक्ति को जब ये पूछा कि आपके घर में सोने के सिक्के कितने हैं तो हर भारतवासी ने मुझे कहा कि हम सोने के सिक्कों को गिनते नहीं हैं, तौल कर रखते हैं, वेट में रखते हैं, काउंट नहीं करते। क्यों, काउंट कितना करेंगे, कितने ज्यादा हैं, जब वस्तुएं जरूरत से ज्यादा होती हैं तो काउंट नहीं की जाती। मैं आपके घर में आऊं और ये पूछूं चावल कितने हैं आपके घर में, तो आप लोगों मूर्ख आदमी है, ये पूछो चावल कितना है घर में, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 100 क्विंटल, किलो में पूछो, क्विंटल में पूछो। तो मैं बोले कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं कि किलो में पूछो कितना सोना है हमारे पास। और वो कहता है कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कई देशों में की है, भारत आने से पहले मैं अफ्रीका गया, भारत आने से पहले कई दूसरे देशों में गया, इतनी समृद्धि मैंने किसी देश में नहीं देखी जो भारत में है। तो ये जो था ना विलियम बेंटिक, वो ये कहता है कि तुमने ये जो सब भारत में देखा है यही बात जाके लंदन में बताना। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, मैं बोल वापस लंदन चला गया, लंदन के पार्लियामेंट में उसने यही स्टेटमेंट रिपीट किया, आई हैव सीन सच वेल्थ इन द कंट्री, मैंने भारत में इतना धन संपत्ति देखा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई एमपीज ने यह सवाल किया कि भारत में इतना धन इतनी संपत्ति आया कहां से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स, उसने कहा कि भारत पिछले 3000 सालों से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और इतना एक्सपोर्ट कर रहा है 3000 साल से कि सारी दुनिया का सोना भारत में इकट्ठा हो गया। जब ये एक्सपोर्ट की बात आई ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो कुछ एमपीज ने पूछा कितना एक्सपोर्ट है भारत का वर्ल्ड मार्केट में, तो उसके स्टेटिस्टिक्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट पर आए और वो स्टेटिस्टिक्स हैं कि सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का होता है, वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट। मैंने $100 का अगर माल बिकता है दुनिया में तो $33 का माल भारत का है, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है भारत का। फिर बात आई कि भारत में प्रोडक्शन कितना होता है, तो अंग्रेजों के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 43% प्रोडक्शन होता है भारत में। फिर वो कहते हैं कि इनकम कितनी है भारत की, तो वो कहते हैं वर्ल्ड की जो टोटल इनकम है उसका 27% इनकम भारत की। और ये सारी बहस का वो ध्यान दीजिएगा 1835 में बहस हो रही है, 1835 में, माने आज से 175 वर्ष पहले भारत दुनिया का सबसे श्रीमंत राष्ट्र था, सबसे समृद्धशाली देश था। अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और वो कहते हैं वर्ल्ड मार्केट में भारत का एक्सपोर्ट 33% है और वर्ल्ड मार्केट में इंग्लैंड का एक्सपोर्ट लेस देन 1% है उस समय 1835, और अमेरिकन एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं था उस समय, ऐसा भारत था 1835 तक। तो फिर आप बोलेंगे गरीबी कैसे आ गई इस देश में। भारत के बारे में और एक जानकारी दूं, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ और ये डिबेट के पेपर हम लोगों को पहली बार देखने और पढ़ने को मिले तो हमारी जिज्ञासा हुई कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे ये बता देना है। तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। दुनिया में सब कुछ मिलता है अगर आपने मन में काम करने की तमन्ना। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिले इस बात के कि हम 3000 साल वर्ल्ड में कॉटन क्लोथ एक्सपोर्ट करते रहे, सूती कपड़ा 3000 साल हमने कपड़ा बेचा दुनिया, और हमारे जो कपड़ा होता था ना वो प्रीमियम प्राइस पर बिकता था। भारत का कपड़ा जब जाता था ना बिकने के लिए तो सौन पर बिकता था, वेट में बिकता था। अभी कपड़ा बिकता है लेंथ में, पहले बिकता था वेट में। तो भारत का कपड़ा तराजू में रखा जाता था और उसके बराबर वजन का सोना दूसरी तरफ रखा जाता था, हम सोने के बदले में कपड़ा बेचते। और 3000 साल हमने कपड़ा बेचा, इतना सोना कमाया कि सारी दुनिया का सोना भारत में आया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया बना। फिर हमने कपड़े के अलावा इसकी ही बेचा, लोहा बेचा, 3000 साल लोहा बेचा। आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा, सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना भारत ने सिखाया, पूरी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले दुनिया में भारत ने सिखाया, ईंट बनाना ब्रिक्स सारी दुनिया को हमने सिखाया, ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए जो चूना लगता है वो सारी दुनिया में सबसे पहले हमने बनाया, ये सारा कॉन्ट्रीब्यूट किया है भारत ने दुनिया। और हम ऐसी 200 से ज्यादा वस्तुएं दुनिया के बाजार में बेचते थे, उसके बदले में हमको सोना मिलता था, और वो सोना उस समय एक्सचेंज का सबसे बड़ा मीडियम था, करेंसी चलती नहीं थी, सोने से सब कुछ एक्सचेंज होता था। तो सारे देश का सोना दुनिया का हमारे यहाँ आ गया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया हो गया। एक इंग्लिश हिस्टोरियन हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने एक पुस्तक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 7 वॉल्यूम्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फर्स्ट वॉल्यूम में विलियम डिग्बी ने लिखा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का महासागर है। और इसमें लिखा कि सारी दुनिया से नदियों का पानी जैसे बहकर महासागर में जाता है, ऐसे ही सारी दुनिया का सोना बहकर भारत में आता है। और इतना सोना इकट्ठा हुआ इस देश में कि भारत के लोगों ने सोने के मंदिर बनाए। दुनिया में किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। आपको मालूम है कितने? आप कहेंगे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर का एक स्वर्ण मंदिर है, ऐसे 13,780 स्वर्ण मंदिर हैं इस देश में। अमृतसर का, गुरुवायूर का, कामकोटी कांचीपुरम का, त्रिचिन्नापल्ली का, कोयम्बतूर का, मैसूर में सोने के मंदिर, बेंगलोर में, हमारे भारत में तो सबसे बड़ा सोने का मंदिर तिरुपति बालाजी, सैकड़ों मीटर टन सोना। उत्तर भारत में जाए तो वैष्णो देवी, सैकड़ों मीटर टन सोना, ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। और मंदिर को सोने के कब बनाता है? जब किसी देश और समाज में जरूरत से ज्यादा सोना आता है तब मंदिर बनते हैं, अदरवाइज सोने का इस्तेमाल पहले खुद किया जाता है बचने को मंदिर बनाया था। ऐसा देश था हमारा। फिर ये गरीब कैसे हुआ, ये गरीब हुआ। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जब ये बहस हुई कि भारत के पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सोना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये तय किया कि ये सारा भारत से इंग्लैंड में लाना है। कैसे लाएं? तो बिल्कुल फोर्स कहता है इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका है लूटो, भारत को लूटो। तो लूटना कहते हैं तो वो कहता है एक तो ऑफिशियल लूटो और दूसरा अनऑफिशियल लूटो। ऑफिशियल लूटो, भारत के घरों में जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक और अधिकारी हैं उनकी मदद से सब लूट लूट के लाओ, ये अनऑफिशियल। और ऑफिशियल लूट करके जाओ तो वो कहता भारत के लोगों पे टैक्स लगा दो, और टैक्स इसलिए लगा दो कि सारा धन भारत का इंग्लैंड में आ जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला टैक्स लगाया इस देश पर, जिसका नाम रखा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स 1840 में लगा, और इस टैक्स का मतलब बताया क्या था, आप 100 रुपए का उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को टैक्स में देना। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति उत्पादन करेगा तो अंग्रेजों को टैक्स देगा, लेकिन उत्पादन के बाद वो सामान को बेचेगा तो बेचने पर भी टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने दूसरा टैक्स लगा दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने कहा कि भारत का व्यक्ति अगर बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा तो उसके मुनाफे पर भी टैक्स लगा दो। तो उन्होंने लगाया इनकम टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाएगा और सामान बेचेगा तो एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, तो सड़क पर से जाएगा तो एक टैक्स और लगा दो उसके ऊपर, रोड टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई ब्रिज है, पुल है, तो एक टैक्स और लगा दो उसके ऊपर, टोल टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा कि जिस गांव में प्रोडक्शन करता है उस गांव के नाम से टैक्स लगा दो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा जिस गांव में सामान लेके आ रहा है गांव की एंट्री पर टैक्स लगा दो, ऑक्ट्रॉय। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति कुछ भी पैदा करेगा, बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट में से वो घर बनाएगा तो घर पर टैक्स लगा दो, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि कुछ और प्रॉपर्टी बनाएगा घर के अलावा तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा, फिर घर को खरीदने और बेचने का काम करेगा तो स्टाम्प पर ड्यूटी लगा। ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 टैक्स लगाए, 23, और टैक्स लगा के इस देश को लूटना शुरू किया। पहले अनऑफिशियल लूटा, फिर ऑफिशियली लूटा, और इस लूट में अंग्रेजों ने भारत से 300 लाख कोटी रुपए ले लिया, और उस कारण से ये देश गरीब देश हो गया, वरना ये देश गरीब नहीं था। अब होना यह था कि 1840 से ये टैक्स लगना शुरू हुए, 1930 तक आते आते पूरा भारत गरीब हो गया, क्योंकि सारे टैक्स में पैसे चले गए। अंग्रेजों ने भारत के शेतकड़ी समाज को भी टैक्स लगाया था 90%, जो प्रोडक्शन होता था उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ता था, और ये सब काम करते थे अंग्रेज इस देश में ये बोलकर कि हम भारत का डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं, हम भारत को सुखी बनाने के लिए आए हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि हम भारत को लूटने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली डेवलपमेंट के नाम से लूटा उन्होंने इस देश को, और लूट लूट के भारत तेलंगाना में जमा हुआ, इस कारण भारत गरीब हुआ। फिर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या होना चाहिए था, जिस टैक्स सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने भारत को लूटा वो टैक्स सिस्टम 1947 में खत्म करना चाहिए था, लेकिन 1947 आजादी के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने जब सरकार संभाली तो उसी टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जिसको अंग्रेज कर रहे थे। हमारे देश में एक भी टैक्स खत्म नहीं किया गया, सेंट्रल एक्साइज अभी भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी भी लगता है, इनकम टैक्स अभी भी लगता है, रोड टैक्स अभी भी लगता है, टोल टैक्स अभी भी लगता है, हाउस टैक्स अभी भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लगता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स अभी भी लगता है। हमारे सारे अंग्रेजों ने तो कुछ और ज्यादा टैक्स लगा दिए जो अंग्रेज नहीं लगा पाए। सारे अंग्रेज बने हमारे पुराने पॉलिटिशियन और जीरो, इन्होंने तो एक ऐसा टैक्स लगा दिया सर्विस टैक्स जो अंग्रेज भी नहीं सोच पाए कभी जिंदगी में। सर्विस टैक्स लगा, आपको एक माहिती देना चाहता हूं क्योंकि आप सब गोवा के नागरिक हैं। भारत देश में हाइएस्ट टैक्स पेइंग सिटी जो है ना वो पंजिम है। सबसे ज्यादा टैक्स जिस एक शहर में लगते हैं वो पंजिम है। पूरे भारत 680 शहर हैं, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं अगर पंजिम और उसके आसपास रहते हैं। अंग्रेज ये सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन लेके जाते थे, ये काले अंग्रेज क्या करते हैं ये सारा टैक्स इकट्ठा करके स्विस बैंकों में जमा करते हैं। आपको माहिती है हमारे पॉलिटिशियन टैक्स का पैसा लूटते हैं। आप टैक्स देते हैं पॉलिटिशियन उस पैसे को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? मधु कोड़ा नाम का एक पॉलिटिशियन है देश में महा लुटेरा, मुझे कई बार लगता है कि अंग्रेजों की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई है। वरना इतना कोई रोक सकता है वो आदमी दो बार मुख्यमंत्री रहा झारखंड में, 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया उसने टैक्स का, 5,600। थोड़े दिन पहले सुखराम नाम का एक पॉलिटिशियन आपने देखा होगा, बड़ा दुखी आदमी टैक्स का पैसा लूट लूट के बिस्तर के गद्दे के नीचे रखता। जब सीबीआई का रेट पड़ा तो गद्दे के नीचे से 1,000 के नोटों की गड्डियां निकली। पूछा गया ये कहां से आया सुखराम ने, तो उसने कहा भगवान ने दिया। हाँ भगवान ऐसा है कि सुखराम को देता है, बाकी सबको दुखी रखता है इस देश का भगवान। और हमारे देश में आपको मालूम है कितने चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं? 17 से ज्यादा चीफ मिनिस्टरों के केस चल रहे हैं। जयललिता उसमें से एक है। और कोई कभी नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक है। ये सब जो चीफ मिनिस्टर हैं जो लूट रहे हैं देश और जिनके अगेंस्ट मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कानून तंत्र इतना रद्दी है किसी को फांसी नहीं देता, और ये लूटते रहते हैं लूटते रहते हैं लूटते रहते। और कितना लूटते हैं ये पॉलिटिशियंस इस देश को। एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया देता हूं तो गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लूट के खा जाते हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। हमने कैलकुलेशन किया कि ये 85 पैसा कितना है, तो केंद्र सरकार के लेवल पे जो लूट होती है, राज्य सरकारों के लेवल पे जो लूट होती है, फिर नगर पालिका के लेवल पे जो लूट होती है, फिर ग्राम पंचायत जिला परिषद के लेवल पे जो लूट होती है, सब तरह के लूट के डेटा हमने इकट्ठे किए तो पता चला 1 साल में 17,00,000 करोड़ रुपए की लूट होती है 1 वर्ष। और लूट लूट कर ये सारा धन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स विदेशी बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। स्विट्जरलैंड की बैंकों में हमारे पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं। हमने स्विट्जरलैंड को एक बार पत्र लिखा था स्विस गवर्नमेंट को और उनसे ये पूछा था कि भारत के कितने करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट्स आपके देश में हैं, तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती। क्यों? तो उन्होंने कहा आप भारत की सरकार नहीं है, जब आप सरकार हो जाएंगे तब बताएंगे आप। तो हमने दूसरे तरह से जानकारी निकाली। हमने स्विस गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा दोबारा से और उनको ये पूछा कि कितने भारतवासी हैं जो हरिपाल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं वो बता दें। तुरंत उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा 94,000 भारतवासी हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं। फिर हमने कहा कितने भारतवासी हैं जो फ्री प्लेन की स्विट्जरलैंड जाते हैं, हर हफ्ते में एक बार, महीने में 3-4 बार, ऐसे कितने हैं? तो उनका 80,000 भारतवासी हैं जो हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड आते हैं। तो ये कौन है? ये वही है जिनके अकाउंट्स हैं, वरना हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है? लोग तो एक बार स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इतनी सुंदरता नहीं है वहां जो रोज जाके देखे। हाँ, छोटा सा देश है, 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। हाँ, और जब बर्फ पड़ती है ना तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, जब बर्फ नहीं होती तो एकदम सूने पहाड़, हरियाली कुछ नहीं है, सब सूने पहाड़, मिट्टी पत्थर और कुछ। तो बाद में हम लोगों ने जब इसको सीरियस स्टडी किया तो पता चला स्विस बैंकों में 80,000 पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट है, और इन अकाउंट्स में 72,00,000 करोड़ रुपए जमा है, लूट का पैसा उन्होंने ले लिया। और एक हमने इंटरेस्टिंग काम किया कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो पैसा है इसके बारे में जो बैंक चलाने वाले लोग हैं ना उनको कॉन्टेक्ट किया, उनके एक संस्था है उसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन, उनको जब संपर्क किया तो उन्होंने हमको एक और माहिती दी। उनका कहना है कि हमारी बैंकों में जो 72,00,000 करोड़ पॉलिटिशियन का है इसके अलावा 70 और देशों की बैंकों में भी है, वो भी पता करो आप। हमें तो मालूम नहीं था कितने पता करें, तो उन्होंने एक संस्था का नाम बताया टैक्स जस्टिस नेटवर्क, एक संस्था का नाम बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनको हमने संपर्क किया तो इन्होंने हमको बताया कि भारत के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का 258,00,000 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है, 258,00,000 करोड़। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों ने 1840 से 1945 माने 107 वर्षों में 300,00,000 करोड़ रुपए लूटा, और इन काले अंग्रेजों ने 63 वर्षों में 258,00,000 करोड़ लूट लिया। इसका माने ये सब काले अंग्रेजों में गोरे अंग्रेजों की आत्मा ने ही प्रवेश किया, वरना इतना कैसे नहीं लूट सकते थे अपने ही देश को? अंग्रेज तो विदेशी थे, लूटने को आए थे, ये तो हमारे ही देश में पैदा हुए हैं, लूट रहे हैं। और इन लूटखोरों के चेहरे आपकी आंखों के सामने हैं। हाँ, गोवा में बहुत लूटे थे पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कैसे लूट रहे गोवा को। 15-20 साल पहले जिनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनकी गोवा में 1,000,000,000,000 की प्रॉपर्टी है, कहां से आए? लूटा है, कोई माइनिंग में लूट रहा है, कोई दही लूट रहा है, कोई टूरिज्म में लूट रहा है, लूट में सब लगे। और ये सारे देश में यही हाल है, तो क्या किया जाए? गरीबी बढ़ रही है इस भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि गरीबों के विकास के लिए पैसा भेजा जाता है उसको लूट लेते हैं, खा जाते हैं, गरीबों के खर्च नहीं हो पाता। और बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास। अगर ऐसे ही चलेगा ये देश तो थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि जितना ये देश लूट गया अब इसको आगे नहीं रुकने देंगे, और जितना लूट कर धन विदेशी बैंकों में जमा कर लिया है इस धन का एक एक पैसा भारत में वापस लाएंगे और इस देश के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा क्या ये लूट का पैसा आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये पैसा वापस लाने के 4 रास्ते हैं, हमने बहुत स्टडी किया इस विषय पर, बहुत अभ्यास किया। विदेशी बैंकों में 258,00,000 करोड़ रुपए जो जमा है इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये 258,00,000 करोड़ रुपए जो विदेशों में जमा है ये नेता और अधिकारियों की पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में जमा है। जो भ्रष्ट पुजारी हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये पूरा धन 258 लाख कोटी। अगर इस धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें तो ये सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सभी बैंकों में एक कानून है, वो कानून ये है कि जब तक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन जब धन राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो राष्ट्र की बैंक में ही जमा हो सकता है। ये कानून, अभी ये सारा धन व्यक्तिगत संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति अगर बना सकें तो 258 लाख कोटी रुपए वापस मिलेगा, क्योंकि वो भारत में ही जमा हो सकता है। आप बोलेंगे कौन करेगा इस काम को? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे देश में हैं, एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी संस्था का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट के पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस समय एक यूरिया घोटाला हुआ था, उसमें 133 कोटी रुपए को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और वो पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट था, वो सारा वापस भारत में आया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं इस समय कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है तो चारा घोटाले का भी है, बोफोर्स घोटाले का भी है, एनरॉन घोटाले का भी है, गेहूं घोटाले का भी है, घोटाला घोटाला सब एक, उसमें डिफ्रेंशिएशन क्यों? और इसी उम्मीद में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट 258 लाख कोटी रुपए को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे, और ये पिटीशन 6 महीने पहले फाइल हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और सरकार को नोटिस दे दिया। इस पिटीशन में जो एडवोकेट हैं हमारे वकील, उनका नाम है राम जेठमलानी, वो लड़ रहे हैं और उनके 10 और मित्र हैं, और सरकार को नोटिस गया है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, वित्त मंत्री भारत सरकार प्रणब मुखर्जी को, कि जिन जिन का पैसा विदेशी बैंकों में है सरकार उसके बारे में सारी जानकारी कोर्ट को दे। अब सरकार के हाल खराब है, सरकार ये परेशानी में है कि जिनका पैसा है वही तो सरकार चला रहे, तो सरकार ने चालाकी किया। चालाकी क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि हम ये जानकारी 6 महीने में देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने में माहिती दो, 6 महीने के बाद भी वो ये माहिती नहीं देने वाले ये हम जानते हैं, क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं वो माहिती क्यों नहीं, वो फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, तब हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये तो माहिती देंगे नहीं, आप तो एक्स पार्टी जजमेंट कर दो कि ये जिसका भी धन है ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस बात खत्म हो गई। और फिर जिसको क्लेम करना है वो आए सुप्रीम कोर्ट में कहे ये मेरी संपत्ति, हाँ आगे तो कहे ना माई का राम को आए तो सही देश में से निकल के सुप्रीम कोर्ट के सामने कहे यही संपत्ति है, तो हम उससे पूछ लेंगे तुम्हारे बाप दादों के पास क्या रहे तो तुम्हारी संपत्ति आई कहां से, तुमने कौन से ऐसे सुरखाब के लिए हैं जितनी संपत्ति बना के प्रूव करो ये तुम्हारी संपत्ति, और नहीं प्रूव कर पाए तो देश की संपत्ति है तुम्हारी थोड़ी, तुमने लूटी थी, लूटी हुई संपत्ति अपनी थोड़ी होती है। मजा आएगा इस केस को लड़ने में, देखना आप थोड़े दिन को एक एक की पोल खुलेगी, या तो मुंह बंद करके बैठे के लिए सारे लूट खोल दो, और या ये चिल्लाएंगे तो सबके चेहरे देश के सामने आएंगे, कौन बेईमान है कौन ईमानदार। हम जो देश हित लड़ने वाले हैं पूरी ताकत से, चाहे इसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। दूसरा एक काम हम और करने वाले हैं कि हमारी जो संसद है ना, इस संसद में हम एक प्रस्ताव रखवाना चाहते हैं, एक खासदार ढूंढ रहे हैं पूरे देश में हम, और एक खासदार तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो माई का लाल अभी तक जिंदा हो, ऐसा नहीं कि सब मर गए, सब ईमान नहीं हो गए, कोई तो ईमानदार मिलेगा। उस खासदार से हम एक प्रस्ताव कराना चाहते हैं लोकसभा में। प्रस्ताव ये है
कि 1945 15 अगस्त से लेकर आज तक जितने घोटाले भारत में हुए, जितना करप्शन हुआ, वो सारा धन राष्ट्र की संपत्ति है। ये प्रस्ताव संसद में आए तो सभी खासदारों को इस पर बहस करनी पड़ेगी। प्रस्ताव को एक खासदार रखेगा, बहस तब करेंगे। बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन बेईमान खासदार इसका अपोज कर रहा है। जो विरोध करेगा, आपस की बात है, उसी का बैंक में खाता है, पैसे होती है। तो हमारे सामने काम अच्छा होने वाला है। और ये प्रस्ताव संसद में आया तो कई बार मुझे कोई लोग बोल रहे हैं कि झटके वाले बहुत सारे खासदार विरोध ही नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा, हमको क्या करना, हमारे तो दोनों हाथ में ले जो ज्यादा प्रस्ताव देगा तो विरोध करने वाले खासदारों को पूरा देश देखेगा, और या तो प्रस्ताव पास होगा तो 258 लाख को सीमा बताएगा। वी हैव नथिंग टू लूज, कुछ है ही नहीं हमें हारने के लिए, हम तो जीतने वाले हैं दोनों ही इससे। फिर कई लोग हमको ये कहते हैं कि राज्यपाल शायद एक खासदार भी ना मिले आपको ये प्रस्ताव रखने वाला, तो हम कहते हैं कि फिर 2014 में चुनाव आएंगे देश के, तो चुनाव में हम उतरेंगे। और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सारे देश के सामने इस बात के लिए अपील करेंगे कि एक खासदार हमको जिता कर दो जिससे हम संसद में ये प्रस्ताव पास कराएं। और सारा देश हो सकता है 543 खासदारों को जिता दे, हमको एक खासदार मानेंगे पूरे देश। और ये तो पता है कि गोवा को दे ही देगा, एक खासदार क्यों मुश्किल, क्या मुश्किल, गोवा को दे ही देगा। और वो एक खासदार फिर प्रस्ताव रखेगा। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर परम पूजनीय स्वामी जी ने अपील किया तो देश तो 543 खासदार भी दे सकता है, क्योंकि देश इस समय बहुत दुखी है। देश पता क्या कहता है, वो कहता है एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, दोनों बैठ रहे हैं, हमको तो तीसरा चाहिए। सभी पार्टियों के लोग बेजार हो चुके हैं, वो कहते सब एक जैसे हैं, ये भी लूटते हैं, वो भी लूटते हैं। अब क्या करें, हम देश में एक अभियान चलाते हैं 100% वोटिंग का, 100% मतदान का। तो सब लोग मुझे ये कहते हैं कि कोई एक ईमानदार आदमी दो, हम उसको 100% वोट करेंगे, हम बेईमानों को नहीं करना चाहते। तो देश तो हो सकता है 543 खासदारों को चुन के दे, और अगर ये खासदार चुनकर आ गए तो एक मिनट में कानून बनाएंगे, 543 खासदार अगर एक साथ कहें तो स्विस बैंक का पैसा और विदेशी बैंकों का पैसा तो सब आ जाएगा 258 लाख। और ये पैसा आएगा तब हम इस पैसे का उपयोग करेंगे गांव में। भारत के 6,25,365 गांव है, हर गांव में 100 उद्योग लगाएंगे, 4 लाख गांव में कपास पैदा होती है तो खादी का उद्योग वहां चलाना है, 4 लाख गांव, 2.5 से 3 लाख गांव में ऊस पैदा होता है गन्ना, तो वहां पर काकड़ी का उद्योग चलवाना, गुड़ और काकड़ी। भारत के 3 लाख गांव में गेहूं पैदा होता है तो गेहूं के आटे का उद्योग हर गांव में चलाना है। करीब 3.5 लाख गांव में नारियल होता है, तिल होता है, सरसों होती है, तो तेल का उपयोग गांव में चलाना है। करीब भारत में 2 लाख ऐसे गांव हैं, 2 लाख से ज्यादा है, जहां आम पैदा होता है तो आम का पापड़ बनता है, आम का अचार बनता है, आम का मुरब्बा बनता है, आम की जैली बनती है, आम का जैम बनता है, आम का रस निकाल के पैकेट में बंद करके पेट्रा पैक में हम बेच सकते हैं। और हमको ऐसी टेक्नोलॉजी देश में देखे हैं कि आम का रस खाली बॉटल में भरे एक ही साल खराब नहीं होता। ये गांव गांव हम क्यों नहीं कर सकते, जहां आम है वहां ये सब हो सकता। फिर भारत में 1 लाख गांव में आंवला पैदा होता है, 1 लाख गांव में एलोवेरा पैदा होता है, आंवले के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं, एलोवेरा के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 100 से ज्यादा उद्योग हर गांव में लग सकते हैं, और इन उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को काम मिलता है, 65 कोटी। तो बेरोजगारी तो एक बार में खत्म होती है, गरीबी भी खत्म होती है।
और इस पूरे काम में इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख कोटी और हमारे पास है 258 लाख कोटी। आराम से करेंगे इन्वेस्ट। फिर बचे हुए पैसे उसमें 4 लाख कोटी और इन्वेस्ट करें तो हर गांव को 24 लाख बिजली दे सकते हैं, बीच 7 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर गांव को सड़क मिलती, 10 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर शेतकड़ी के शेत को पानी दे सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते, करीब 8 लाख कोटी खर्च करें तो हर गांव को स्कूल कॉलेज मिलता है, अपेक्षा की समस्या खत्म होती है, 10-12 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर गांव को आयुर्वेद का हॉस्पिटल दे सकते हैं और योग प्राणायाम का केंद्र बना सकते हैं हर गांव, और ये सब काम करने में 50 लाख कोटी खर्च होगा, कुल 50 लाख कोटी में भारत की सब समस्याओं का समाधान होगा, तब भी 208 लाख कोटी बचेगा, उसको क्या है बैंक के फिक्स डिपॉजिट में उसको रखेंगे, 208 लाख कोटी का एक साल का ब्याज आएगा 20 लाख कोटी और उस ब्याज से ही देश को चला लेंगे, टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे देश में, टैक्स पर खत्म और टैक्स जब हम खत्म करेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स खत्म हो तो 1 लीटर पेट्रोल 12 रुपए का मिलेगा, 1 लीटर डीजल 7.80 रुपए का मिलेगा, 1 रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा, 1 सीमेंट का 50 किलो का पैकेट 72 रुपए का मिलेगा, 1 किलो आयरन 12 रुपए में, आपको अमेरिका जाना, अमेरिका से वापस आना 7,000 रुपए में आने जाने का टिकट हो जाएगा, टैक्स खत्म होने के सब चीजें सस्ती, तो महंगाई खत्म और टैक्स खत्म तो आमदनी बढ़ेगी लोगों, और इनकम टैक्स जब खत्म होगा ना तो सबसे बड़ी क्रांति होगी कि जितना ब्लैक मनी देश के अंदर छुपा हुआ पड़ा है वो सब बाहर आ जाए, और देश के अंदर 50 लाख कोटी का ब्लैक मनी है ये सब बाहर आएगा, और ये पैसा कहां जाएगा, या तो बैंक में डिपॉजिट होगा, या तो लोग इसको इंडस्ट्रीज और बिजनेस में लगाएंगे, या तो लोग इस पैसे को खर्च करेंगे, तीनों मामले में ये पैसा मार्केट में आएगा, और मार्केट में 50 लाख कोटी रुपए अगर घूम रहा है तो भारत को कटोरा लेकर भीख मांगने किसी देश के सामने जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही पास इतनी पूंजी, और ये क्या होगा, मैंने तो एक दिन कैलकुलेशन किया कि 20 लाख करोड़ का सालाना जो इंटरेस्ट आएगा ब्याज 6 साल तक तो हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे विकास के लिए, 7वें साल से तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करें इसमें करके, क्योंकि विकास तो पूरा हो जाएगा 6 साल में, फिर क्या करें, पैसे तो आने ही वाले हैं 20 लाख कोटी खर्चा, तो हमने कैलकुलेशन किया उसका कि ये पैसे को दूसरे देशों को दान करेंगे जहां गरीबी है, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, उन देशों में ये दान करके उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, और उन देशों से दोस्ती हो गई तो कभी भी वो देश हमारे काम आएंगे, हमारे पड़ोस में 4 दुश्मन रहते हैं, एक का नाम है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, नेपाल भी अब दुश्मन हो गया हमारा, जब से वहां कम्युनिस्ट सरकार आई है नेपाल भी भारत को गाली देना शुरू कर दिया, इन 4 दुश्मन देशों का कभी भी धोखा हो सकता है, इसलिए दुनिया के 70-80 देशों को दोस्ती बनानी है, और अगर ये देश कोई धोखा देंगे तो वो सब देश हमारी मदद करेंगे, और हम जो देशों से दोस्ती बनाएंगे ये सब वो देश हैं जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल, और ये देश अगर हमारे दोस्त हुए तो इन 70-80 देशों की तरफ से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, और उस मुकदमे में 300 लाख कोटी रुपए जो अंग्रेज ले गए वो वापस मांगेंगे ब्याज के साथ, उसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण हमने काफी इकट्ठे कर लिए जो अंग्रेज यूज के ले गए, कोहिनूर हीरा हमारा अभी भी अंग्रेजों के पास है, कोहिनूर जैसे 4,500 हीरे अंग्रेजों के पास हैं, सोमनाथ के मंदिर का सोने का दरवाजा था वो अंग्रेजों के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है, पहले सोमनाथ को लूटा महमूद गजनवी ने, बाद में महमूद गजनवी को लूटा अंग्रेजों ने, तो सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति इस समय लंदन में। आप कभी लंदन जाए तो लंदन के म्यूजियम्स को देखिए, भारत की संपत्ति से भरे पड़े। ये सब वापस लाना है और इसके लिए दूसरे देशों से मदद चाहिए। वो मदद हमें मिलेगी अगर हम उनकी मदद करेंगे। और ये अंग्रेजों से जो 300 लाख कोटी इंटरेस्ट के साथ हम लाएंगे, तो इंटरेस्ट अगर आप जोड़ें 63 साल का ही जोड़ें आजादी के बाद का, या तो उस दिन से जोड़ें जिस दिन इसके लिए कंपनी भारत आई थी, तो ये सारा धन 700 लाख कोटी से ज्यादा है। और इस पूरे धन को सोने के रूप में लाएंगे, गोल्ड में लाएंगे। और इतना अगर गोल्ड लाके भारत में डिपॉजिट अगर कर दिया हमने, तो भारत की संपत्ति बढ़ जाएगी। भारत की संपत्ति बढ़ेगी तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी $1 में 48 रुपए है, फिर $1 में 1 रुपया हो जाएगा, और $1 1 रुपया हुआ तो जितना एक्सपोर्ट अभी हम करते हैं वो एक्सपोर्ट से जितनी आमदनी होती है वो 50 पट जाती हो जाएगी। आमदनी एक्सपोर्ट इनकम 50 गुनी ज्यादा होगी, इम्पोर्ट का खर्चा 50 गुना कम होगा, तो हमारे पास इतना ट्रेड सरप्लस होगा कि चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रह जाए, हम उसके भी आगे निकल जाए। और चीन अमेरिका से आगे निकल गए अगर हम, तो सारे दुनिया के फिर विश्वगुरु हम बनेंगे। भूतकाल में भारत विश्वगुरु था, भविष्य में नहीं बनेगा, वो भारत का वर्तमान ठीक कर रहा है। ये योजना है भारत स्वाभिमान। इस योजना में आपकी मदद चाहिए और आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला, क्योंकि भारत में कोई भी काम जो होता है ना वो बहुमत से होता है। बहुमत जिसके साथ होता है काम उसी का होता है, देश अच्छा काम हो या बुरा काम हो बहुमत के बिना नहीं होता। तो संसद में बहुमत चाहिए, समाज में भी हमें बहुमत चाहिए। और बहुमत हमें मिले इसके लिए हमने मेंबरशिप का अभियान शुरू किया है। भारत के एक एक गांव से हम मेंबर बना रहे हैं। 5 कोटी नागरिकों को मेंबर बनाना है 4 वर्षों में, और ये 5 कोटी नागरिक जब तक वो मेंबर बनाएंगे तो 50 कोटी लोग हमारे साथ हो जाएंगे। और इतनी बड़ी ताकत अगर हमने खड़ी की तो भारत की संसद में 400 से ज्यादा खासदार हमारे होंगे, और भारत के 23 राज्यों की विधानसभाओं में 4000 से ज्यादा आमदार हमारे होंगे। हम तो कुछ भी कर पाएंगे फिर इस देश में। हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून भी बदलने हैं, 34,735 अंग्रेजों के कानून हैं, IPC, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब कानून भी बदलने, ये सब काम करना है। और इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान है। भारत स्वाभिमान को आपकी मदद चाहिए, आप इसके मेंबर हो जाइए। यहां से मदद हमें चाहिए, आप मेंबर बनिए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो यहाँ स्टॉल से आप ले लीजिए, फॉर्म भर ले जाइए, उसको नाम पता फोन नंबर भर के हमें वापस दे दीजिए। और जब आप फॉर्म वापस करेंगे तो आपसे 51 रुपए की धनराशि चाहिए भारत स्वाभिमान के। जो आप फंड देंगे 51 रुपए का, उसी से हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमने एक संकल्प लिया है कि किसी करोड़पति आदमी से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ नहीं लेंगे। भारत के एक एक व्यक्ति से 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए लेंगे। 10 कोटी किसी से हम लें उससे अच्छा है 1 कोटी शेषकारी नागरिकों से 10-10 रुपए लें। 50 कोटी हम किसी से लें उससे अच्छा है 5 कोटी नागरिकों से 10-10 रुपए लें। क्यों? जो हमें 10-20-50 कोटी देगा उसका पैसा ईमानदारी का है बेईमानी का है पता ही नहीं, और अगर वो पैसा बेईमानी का हुआ तो हमको भी बेईमान बनाएगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा बेईमान ही बनाता है, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो गरीब है शेतकड़ी मजदूर कारीगर, उनसे लेना है पैसा और उस पैसे से बनाना है इस देश को, क्योंकि ये देश करोड़ों नागरिकों का है, कुछ कोटिपति लोगों का नहीं। इसलिए गांव गांव जा रहे हैं हम लोग, शेतकड़ी नागरिक को 1.5 रुपए का मेंबर बनाते हैं, शहर में रहने वालों को 51 रुपए का मेंबर बनाते हैं। तो आप मेंबरशिप लें, रसीद ले लें और दान की राशि हमें दें। इसी दान से ये सारी लड़ाई लड़नी है। और हमें उम्मीद है कि आप जरूर मदद करेंगे और ये मदद आप क्यों करेंगे, इसलिए कि आपके दिल में भी यही आग है जो हमारे दिल में है। देश को अच्छा होना चाहिए, देश को समृद्धशाली होना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए, भुखमरी मिटनी चाहिए। ये आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, नहीं तो आप इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे। ढाई घंटे से मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा है, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में भी तड़प है देश के लिए, आपके दिल में भी कुछ करने की तमन्ना है। और ये क्यों है, मैं बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। शायद ये इसलिए है आपके दिल में तड़प देश के लिए कि आप सबकी जो आत्मा है वो पुराने जमाने के शहीदों की आत्मा है जो कि शरीर में प्रवेश की है, तभी तो आप ये सब इकट्ठे हो। पहले हम इकट्ठे हुए थे नाना साहब पेशवा के साथ, तात्या टोपे के साथ, नाना फलमदीप के साथ, वासुदेव बलवंत फड़के के साथ, चाटेकर बंधुओं के साथ, भगत सिंह उधम सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, और अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं स्वामी रामदेव के साथ। हैं हम सब वही लोग, क्योंकि हम तो मानते हैं ना आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। उस समय में हमारी आत्मा रही होगी, भगत सिंह की, उधम सिंह की, चंद्रशेखर की, किट्टू चिनम्मा की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, अब वही आत्मा वापस आई है शरीर में, तभी हम एकत्रित हो रहे हैं। और अब हम एकत्रित हो रहे हैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। पहले हम एकत्रित हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब एकत्रित हो रहे हैं काले अंग्रेजों को भगाने के लिए। हमारा काम अधूरा है, पूरा करना है। और अच्छी बात यह है कि इस बार सन्यासी ने हमको एकत्रित किया, और भारत में सन्यासी लोग जब संकल्प लेते हैं तो भगवान भी वो संकल्प पूरे कराता है। हमारे भारत में सन्यासी हुए, उनका नाम था कवच गुरु रामदास। उन्होंने संकल्प किया औरंगजेब का राज्य समाप्त करना है दक्षिण भारत से, और ये संकल्प पूरा होने के लिए भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने समस्त गुरु रामदास का संकल्प पूरा करने के लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, और दक्षिण भारत से औरंगजेब को खत्म कर दिया। और आपको मालूम है औरंगजेब का शासन जब दक्षिण भारत में समाप्त हुआ तो थोड़े दिन के बाद ही औरंगजेब मर गया, और उसके बाद पूरे देश के मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। सन्यासी का संकल्प इतना बड़ा होता। एक सन्यासी हुए स्वामी रामतीर्थ, लातूर के पास एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने संकल्प लिया था, संकल्प ये था कि हैदराबाद का जो राज्य है वो भारत में मिलाना है, और हैदराबाद का निजाम ये कहता था मुझे पाकिस्तान जाना। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम पाकिस्तान जाओ, राज्य तो भारत में रहेगा। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेशन में भेज दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारत में मिला दिया। ऐसे ही हमारे देश में एक सन्यासी हुए परम सम्माननीय दयानंद सरस्वती, और उनके दिल में आग थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और इनको भारत से भगाने के लिए कोई संगठन बनाना है। तो भगवान ने स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने सारे शिष्य तैयार किए कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर डाली। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, ये सब स्वामी दयानंद के शिष्य थे, और इन्होंने आजादी की लड़ाई इतनी जोरदार लड़ी कि 47 में भारत आजाद हो गया। सन्यासी जब संकल्प लेता है तो ईश्वर भी वो संकल्प को पूरा कराता है, क्योंकि सन्यासी का अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता है, वो जो संकल्प लेता है देश के लिए लेता है। तो अभी उसी सन्यास परंपरा में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को समृद्धशाली बनाना, वैभवशाली बनाना, फिर से सोने की चिड़िया बनाना, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी भारत से हटानी है, 258 लाख कोटी विदेशी बैंकों से भारत में वापस लाना है, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बदलनी है, सब कुछ बदलना है। अब इस संकल्प को पूरा कराने के लिए भगवान ने 2,40,000 योग शिक्षकों को तो अब तक भेज दिया है। 11,00,000 योग शिक्षक अगले 2 साल में आने वाले हैं। संकल्प तो ये भी पूरा ही होगा। आप इसमें आ जाएं तो जल्दी होगा, नहीं आएंगे तो भी होगा, आपके बिना होगा, कोई दूसरा आएगा। संकल्प को होने आप आएंगे तो यह आपको मिलेगा, नहीं आएंगे दूसरा व्यक्ति यश लेगा। सन्यासी को तो यश से कुछ लेना देना होता नहीं, यश तो उनको मिलता है जो सन्यासी के साथ काम करते, क्योंकि सन्यासी जो होता है ना, यश अपयश से परे होता है, मान सम्मान से परे होता है, हानि लाभ से परे होता है, सत्ता संघातन से परे होता है। सन्यासी को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए होता है। तो यश तो सन्यासी लेता नहीं, वो तो बांटता है। तो यश तो आपको ही नहीं लेना, आप आ जाओ जल्दी से, नहीं तो कोई और आ जाएगा। और आप अगर आओगे तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे कहेंगे गर्व से कि भारत स्वाभिमान का गर्व हुआ, मेरे आई बाबा ने उसमें भाग लिया। और नहीं आओगे तो यही बच्चे गाली देंगे आपको भविष्य में कि इतना बड़ा गर्व चला और तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बच्चों की आंखों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मेरी विनती है आप आ जाओ जल्दी से भारत स्वाभिमान में, मेंबर हो जाओ, 10-10 और लोगों को मेंबर बनाओ, जल्दी से 5 कोटी की संख्या पूरी हो, तो हम सब मिलकर एक नया भारत, समृद्ध भारत, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, सारी दुनिया का गुरु भारत, ऐसा भारत बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत भूतकाल में विश्वगुरु था, भविष्य में भी होगा, बस वर्तमान इसका ठीक हो। यही कहकर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फॉर्म लेके रहिएगा, मेंबरशिप के फॉर्म यहाँ रखे हुए हैं भरपूर संख्या में। और आप जब जाएं यहाँ से तो हमारे भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ता खादी बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, उसका भी इधर स्टॉल है। आप थोड़ी थोड़ी खादी अगर इनसे खरीदेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला हुआ है। कई कार्यकर्ता चरखा चलाते हैं, सूट बनाते हैं, फिर खादी बुनते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी खादी पैदा करके और खादी बिकवा के, वैसे ही नई आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये खादी के उत्पादन से। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले, आप उनकी 2-2, 5-5 मीटर खादी खरीदें, उनका स्टॉल है और मेंबरशिप के फॉर्म लेके जाएं। ये निवेदन के साथ आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सबको लेके जय
भारत माता की, जय भारत।